आगे सबक देखिए भाई। वह हजफ्तल मफूल तहर्रुजन अनिल तकरारी लौ दुकिरा व अनिल इज़्मार क़ब्ल ज़िक्र फिल फ़ज़लति लौ उज़्मिरा इन इस्तुग़निया अन्हु व इल्ला अय व इल्लम युस्तग़ना अन्हु अज़हरता अयिल मफूल नहव हसिबनी मुंतलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन لأنه لا يجوز حذف أحد مفعول باب حسبت। भाई गुज़श्ता सबक में तनाज़ुअ फ़िअलैन का मसला चल रहा था। आपने पढ़ा कि तनाज़ुअ फ़िअलैन के मसले में दो इख्तिलाफ बड़े हैं। एक इख्तिलाफ है इमाम फर्रा का जमहूर के साथ। इमाम फर्रा फरमाते हैं कि वो सूरत जिसके अंदर पहला फाइल का तकाजा करे तो पहले ही को आमिल बनाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर आपने दूसरे को आमिल बनाया तो पहले के लिए या तो फाइल को हजफ करना पड़ेगा या फाइल की जमीर लाना पड़ेगी, और दोनों ही जायज नहीं। हजफ फाइल भी जायज नहीं और इजमार कबल जिक्र भी जायज नहीं। जबकि इमाम कीसाई फरमाते हैं कि इस सूरत में अगर पहला फाइल का तकाजा करे और आप दूसरे को आमिल बनाएं तो फिर पहले के लिए फाइल को हजफ कर देंगे, यानी फाइल नसिया मनसिया होगा। नसिया मनसिया का माना भूला बसरा, यानी बिल्कुल भुला ही दिया, यानी ये फेल फाइल को गोया चाहता ही नहीं है, उसका तकाजा ही नहीं कर रहा। तो पहले फेल के लिए इस सूरत में फाइल को हजफ कर देंगे ताकि हम इजमार कबल जिक्र की खराबी से बच जाएं। तो इजमार कबल जिक्र तो नहीं करेंगे, अलबत्ता फाइल को हजफ कर देंगे। जबकि जमहूर कहते हैं कि जब पहला फाइल का तकाजा कर रहा हो तो भी सानी को अमल देना जायज है, और इस सूरत में पहले के लिए फाइल को हजफ नहीं करेंगे, जैसे कि इमाम कीसाई ने कहा, इसलिए क्योंकि हजफ फाइल जायज नहीं। हां, जमीर ले आएंगे, और इस सूरत में क्या खराबी लाजिम आती थी, इजमार कबल जिक्र की। तो उसका जवाब भी जमहूर देते हैं कि इजमार कबल जिक्र उम्दा में जायज है बशर्ते तफसीर, कि आगे तफसीर आ जाए। तो यहां देखो, पहले के अंदर जमीर ले आएंगे और दूसरे फेल के फौरन बाद वो इसम आ रहा है जिसकी तरफ जमीर लौट रही है, तो वो मर्जे आगे आ गया, तो उस जमीर की तफसीर आ गई भाई कि ये जमीर किसको राजे है, इससे कौन मुराद है। तो ये है इजमार कबल जिक्र उम्दा में, और ये जायज है बशर्ते तफसीर भाई। और फिर उसके बाद साहिब जामी ने आपको ये भी बतलाया था कि ये जो इमाम फर्रा का मजहब मतन में जिक्र हुआ, कि मतन में क्या मजहब जिक्र हुआ कि पहला जब फाइल का तकाजा करे तो उसी को आमिल बनाएंगे, सानी को आमिल बना ही नहीं सकते। ये मजहब, ये रिवायत जो है इमाम फर्रा से ये मशहूर नहीं है। और फरमाते हैं कि इमाम फर्रा से दो और रिवायतें भी हैं। एक रिवायत ये है कि जब पहला फेल फाइल का तकाजा कर रहा हो तो अगर दूसरा भी फाइल का तकाजा कर रहा है तो फिर दोनों को आपस में शरीक कर दो रफा देने में। जराबनी व अक्रमनी जैदुन, इस जैदुन के अंदर जराबा और अक्रमा दोनों को शरीक कर लेंगे, दोनों इसको रफा दे रहे हैं भाई। जबकि जमहूर के नजदीक ये जायज नहीं कि एक ही मामूल पर दो आमिल दाखिल हो जाएं। और दूसरी रिवायत इमाम फर्रा से यह है कि दोनों फेल मसलन फाइल का तकाजा कर रहे हैं और आपने दूसरे को आमिल बनाया है, तो पहले फेल के लिए उस इसमें जाहिर के बाद जमीर ले आओ, वो फाइल बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? उसके लिए फाइल बन जाएगी, जिस तरह नसब वाली हालत के अंदर बाद में जमीर ले आते हैं। जैसे देखो, ये मिसालें थी भाई कल के सबक के बिल्कुल आखिरी सतर में, जराबनी व अक्रमनी जैदुन हुआ। जराबनी चाहता है ये जैद मेरा फाइल बने, अक्रमनी चाहता है ये जैद मेरा फाइल बने। तो एक रिवायत तो क्या कि दोनों को शरीक कर दिया जाए, दोनों मिलकर जैद को रफा दें, और दूसरी रिवायत क्या कि अक्रमनी को आपने जैद में फाइल बना दिया, तो जराबनी के लिए जैद के बाद हुआ जमीर ले आओ, ये हुआ जमीर फाइल है जराबानी के लिए और नीज ये जमीर राजे है जैद को। तो देखो पहले फेल के लिए फाइल भी आ गया और नीज इजमार कबला जिक्र की खराबी से भी हम बच गए क्योंकि उस इसमें जाहिर के बाद जमीर हमने निकाली है। अगली मिसाल देखिए, व जराबनी व अकरम तु जैदन हुआ। जराबनी चाहता है जैदन मेरे लिए फाइल बने और अकरम तु चाहता है जैदन मेरे लिए मफूल बने। तो पहला फाइल का तकाजा कर रहा है तो आपने सानी को आमिल बनाया यानी अकरम तु को और इसने जैदन को नसब दे दिया। अब पहला फेल फाइल का तकाजा कर रहा है तो इसके लिए जैदन के बाद हुआ जमीर ले आओ और ये हुआ जमीर जराबनी के लिए फाइल बन जाएगी और ये जमीर राजे है जैद को। तो देखो पहले फेल के लिए फाइल भी आ गया और इजमार कबला जिक्र की खराबी से भी हम बच गए। भाई सूरत समझ में आ गई। अब आइए भाई आज के सबक पर। कहते हैं वह हजफ तल मफूल तहरुजन अनिल तकरारी लौ दुकिरा व अनिल इजमार कबल दिक्र फिल फजलत लौ उजमीरा इन इस्तुग्निया अनहु व इल्ला अय व इल्लम युस्तग्ना अनहु अज़हरता अयल मफूल। इधर देखिए बहस चल रही है तनाजुए फ़ेलैन की और तनाजुए फ़ेलैन के अंदर हम पहला मजहब कर रहे थे बसरा वालों का। बसरा वालों के नजदीक पसंदीदा यह है कि सानी को आमिल बनाया जाए और अव्वल अगर फाइल का तकाजा कर रहा है तो अव्वल में फाइल की जमीर लेंगे क्योंकि इजमार कबल जिक्र उमदा में जायज है बशर्ते तफसीर। बात समझ में आ रही है किसका मजहब चल रहा है? बसरा वालों का। आमिल किसको बनाया? सानी को। तो अव्वल अगर किसका तकाजा कर रहा है? फाइल का। तो अव्वल फेल के अंदर फाइल की जमीर ले आएंगे और अगर अव्वल मफूल का तकाजा कर रहा है तो फिर मफूल को हजफ कर देंगे। क्या करेंगे? मफूल को हजफ कर देंगे। इसलिए क्योंकि यहां तीन एहतमाल ही बनते हैं, तीन एहतमाल। आमिल किसको बनाया? सानी को। और पहला किसका तकाजा कर रहा है? मफूल का। तो तीन ही एहतमाल बनते हैं, या तो उस मफूल को दोबारा जिक्र कर दो या उसकी जमीर ले आओ या उसको हजफ कर दो। तवज्जो है? या उस मफूल को पहले फेल के लिए दोबारा ले आओ जिक्र कर दो, लेकिन दोबारा जिक्र पसंदीदा नहीं, इसे तो तकरार लाजिम आएगा और तकरार बगैर किसी नुक्ते के हो, बगैर किसी वजह के हो, वो पसंदीदा नहीं। जैसे जरब तू अकरम तू जैदन, ये जैदन को नसब किसने दिया? अकरम तू ने। तवज्जो है? अकरम तू ने नसब दिया और जरब तू भी क्या चाहता है? मफूल चाहता है। तो फिर अगर हम दोबारा मफूल को लाएं तो इबारत यूं बन जाएगी, जरब तू जैदन व अकरम तू जैदन, जरब तू जैदन व अकरम तू जैदन। देखा उसी मफूल का तकरार आ गया, वो मफूल दो दफा आया तो उस इसम का तकरार आ गया और तकरार पसंदीदा नहीं। जरब तू जैदन व अकरम तू जैदन, भाई एक दफा एक इसम को जिक्र किया जाता है, दोबारा उसकी जमीर वगैरह लाई जाती है, दोबारा उसको जिक्र नहीं किया जाता। तो अगर जिक्र करेंगे तो क्या खराबी लाजिम आएगी? तकरार लाजिम आएगा और तकरार पसंदीदा नहीं। किस सूरत में? पहला किसका तकाजा कर रहा है? मफूल का। उसके लिए हम या तो मफूल को दोबारा लाएंगे तो तकरार लाजिम आएगा और तकरार पसंदीदा नहीं, या हम मफूल की जमीर लाएंगे, लेकिन इस सूरत में तो इजमार कबला जिक्र की खराबी लाजिम आएगी। इजमार कबला जिक्र उमदा में तो जायज है बशर्ते तफसीर, लेकिन मफूल तो क्या है? फजला है, उसके अंदर तो इजमार कबला जिक्र जायज नहीं। तो देखो मफूल को दोबारा जिक्र भी नहीं कर सकते, उसकी जमीर भी नहीं ला सकते, तो फिर तीसरी सूरत यही रह गई कि मफूल को क्या कर लिया जाए? हजफ कर लिया जाए। तवज्जो है? तो सानी को जब आप आमिल बनाएं और पहला मफूल का तकाजा कर रहा हो तो फिर उस मफूल को क्या कर लिया जाएगा? हजफ कर लिया जाएगा। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि मफूल को हजफ करना जायज नहीं होता, मफूल को हजफ करना जायज नहीं होता, और यह अफाल कुलूब के अंदर होता है। किसके अंदर? अफाल कुलूब के अंदर होता है। याद रखो अफाल कुलूब कुछ अफाल हैं जिनका ताल्लुक कल्ब से है, दिल से है, जाहिर में कुछ करना नहीं पड़ता। उनका ताल्लुक किससे है? दिल से है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो इनको अफाल कुलूब कहते हैं। और ये अफाल कुलूब दो मफूल चाहते हैं, याद रखो आम अफाल एक ही मफूल चाहते हैं, लेकिन बाज अफाल हैं वो दो मफूल चाहते हैं, और वो अफाल जो दो मफूल चाहते हैं फिर याद रखो वो दो किस्म पर हैं। कुछ को कहते हैं ये बाबे आतैतु से हैं, कुछ के बारे में कहते हैं ये बाबे अलिमतु से हैं। आम अफाल कितने मफूल चाहते हैं? एक मफूल चाहते हैं, लेकिन बाज अफाल हैं वो दो मफूल चाहते हैं। वो जो दो मफूल को चाहने वाले अफाल हैं वो दो किस्म पर हैं। कुछ को क्या कहते हैं? ये किस किस्म के हैं? ये बाबे आतैतु से हैं। और कुछ के बारे में क्या कहते हैं? ये बाबे अलिमतु से हैं, यानी ये अफाल कुलूब में से हैं। याद रखो तो बाबे आतैतु भी दो मफूल चाहता है और बाबे अलिमतु भी दो मफूल चाहता है। आतैतु ज़ैदन दिरहमन, आतैतु के साथ ये ताज़मीर फाइल की, जैदन मफूल अव्वल और दिरहमन मफूल सानी। मैंने जैद को दिरहम दिया, आतैतु मैंने अता किया, मैंने दिया। इसके लिए वो जात भी चाहिए जिसको आपने चीज दी है, और क्या चीज दी है वो भी चाहिए, तो दो मफूल चाहिए। और इसी तरह बाबे अलिमतु है, वो भी दो मफूल चाहता है। अलिमतु ज़ैदन आलिमन, अलिम तो मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, मैंने यकीन कर लिया। जैदन आलिमन के जैद आलिम है, तो देखो ये भी दो मफूल चाहता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? याद रखो बाब आतैतु के जो दो मफूल होते हैं उनकी जात अलग अलग होती है। बाब आतैतु के जो दो मफूल होते हैं उनकी जात अलग अलग होती है, जबकि बाब अलिमतु के जो दो मफूल होते हैं उनकी जात एक होती है। तो बाबे आतैतु के जो दो मफूल हैं उनकी जात अलग अलग। जैसे आतैतु ज़ैदन दिरहमन, मफूल अव्वल क्या? जैद। मफूल सानी क्या? दिरहम। देखो दोनों की जात अलग है, जैद और है, दिरहम और चीज है, भाई दोनों की जात अलग अलग है। जबकि बाबे अलिमतु या अफ़ाल कुलूब के जो दो मफूल हैं उनकी जात एक ही होती है। अलिमतु ज़ैदन आलिमन, मैंने जैद के बारे में यकीन किया कि वो आलिम है, तो देखो जो जैद है वही आलिम भी है। किसके बारे में मैंने यकीन किया आलिम होने का? जैद ही के बारे में यकीन किया, तो जैद भी वही और आलिम भी वही है। फर्क समझ में आ गया? तो ये जो बाब आतैतु है इसके तो एक मफूल को हजफ करना और एक को बाकी रखना जायज है, लेकिन बाब अलिमतु में जायज नहीं है कि एक मफूल को आप हजफ कर लें और एक को बाकी रखें। तवज्जो है, आम अफाल एक मफूल चाहते हैं लेकिन बाज अफाल वो दो मफूल चाहते हैं, और वो फिर दो किस्म पर हैं। कुछ को कहते हैं ये बाबे आतैतु से हैं, कुछ को कहते हैं ये बाबे अलिमतु से हैं, और बाबे अलिमतु ये अफाल कुलूब भी कहलाते हैं। इनमें फर्क यह है कि बाबे आतैतु के जो दो मफूल हैं उनकी जात अलग अलग होती है। जब जात अलग अलग है तो एक को जिक्र करें, एक को हजफ कर दें, आपके लिए जायज है। लेकिन बाबे अलिमतु के अंदर दोनों मफूलों की जात एक होती है, लिहाजा एक को हजफ करें और एक को बाकी रखें यह जायज नहीं। बाबे अलिमतु यानी अफाल कुलूब के अंदर एक मफूल को हजफ करें और एक मफूल को बाकी रखें यह जायज नहीं है। भाई क्यों नहीं जायज? वजह क्या? इसको अच्छी तरह समझ लो। वजह यह, मसलन मैंने क्या कहा? अलिमतु ज़ैदन आलिमन, मैंने यकीन किया कि जैद आलिम है। इसमें पहली बात तो यह याद रखो कि ये जो दोनों मफूल हैं ये दरअसल मुब्तदा खबर थे। क्या थे? अलिमतु ज़ैदन आलिमन, पहले अलिमतु नहीं था, सिर्फ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन था मुब्तदा और आलिमुन थी उसकी खबर कि जैद आलिम है। फिर इस पर अलिमतु दाखिल हुआ, इसने मुब्तदा को अपना मफूले अव्वल बनाया और खबर को अपना मफूले सानी बनाया, अलिमतु ज़ैदन आलिमन। तो ये दोनों मफूल आपस में किसके दर्जे में हैं? मुब्तदा खबर के दर्जे में हैं, और मुब्तदा खबर में से एक को बाकी रखें और एक को हजफ कर दिया जाए ये जायज नहीं। फिर तो बात का पता ही नहीं चलता। भाई बात समझ में आ गई? तो एक वजह ये, दूसरी वजह दूसरे तरीके से इसको समझो कि यहां पर ये दो मफूल हैं लेकिन हकीकत में जो मफूल है वो मजमून जुमला है। हकीकत में यहां मफूल क्या है? मजमून जुमला है। मजमून जुमला किसे कहते हैं? देखो मजमून जुमला कैसे निकालते हैं उसका तरीका समझ लो। ज़ैदुन क़ाइमुन, زیدن قائمن، آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے، تو مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خبر ہے اس کا مصدر نکالو اور مبتدا کی طرف اس کی اضافت کر دو. زیدن قائمن، خبر کیا؟ قائمن. اس قائمن کا مصدر نکالو، قیام، اور اس قیام کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف، قیام زیدن. تو آپ سے کوئی پوچھے زیدن قائمن، اس جملے کا مضمون کیا ہے، آپ کہیں گے اس جملے کا مضمون قیام زید ہے. اس جملے کا مضمون کیا ہے؟ قیام زید ہے. اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیام زید بیان ہو رہا ہے. زیدن عالمن، اس کا مضمون جملہ نکالیں، خبر کیا؟ عالمن. عالمن کا مصدر نکالیں، علم. علم، اس کی اضافت کریں زید مبتدا کی طرف، علم زید بھائی، علم زیدن، علم زید. اس جملے کا مضمون کیا؟ علم زیدن کہہ لیں یا اردو میں کہہ لیں علم زید. اس جملے کا مضمون علم زید ہے، یعنی اس میں علم زید بیان ہو رہا ہے. اور زیدن قائمن میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیام زید بیان ہو رہا ہے. تو مضمون جملہ نکالنے کا کیا طریقہ؟ کہ خبر کا مصدر نکالیں اور اس کی مبتدا کی طرف اضافت کر دیں. اچھا یہ تو آسان تھا، اب ذرا مشکل جملہ لائیں، اس کا مضمون جملہ نکالیں. زیدن قائمن فی الدار، زیدن قائمن فی الدار. ترکیب کیا ہے؟ زیدن مبتدا، قائمن مرفوع لفظاً اسم فاعل، اور فی الدار جار مجرور اسی قائمن سے متعلق ہے. معلوم ہوا زید کا قیام کس جگہ ہے؟ گھر میں ہے. تو فی جارہ اداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ قائمن سے. قائمن صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ زید کو راجے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی زیدن قائمن فی الداری، اس کا مضمون جملہ نکالیے. خبر کیا؟ خبر کیا؟ قائمن. خبر صرف قائمن نہیں ہے بلکہ قائمن فی الدار ہے. تو آپ صرف قائمن جو صفت کا صیغہ ہے اس کو مثلا لے لیا، اور اس قائمن کا مصدر کیا؟ قیام، اور اس کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف، قیام زیدن. اور باقی جو جار مجرور وغیرہ ہیں ان کو ساتھ ویسے ہی ذکر کر دو. اب آپ سے کوئی پوچھے زیدن قائمن فی الدار کا مضمون جملہ کیا، آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس جملے میں قیام زیدن فی الدار بیان ہو رہا ہے، گھر کے اندر زید کا قیام بیان ہو رہا ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ اچھا تیسری صورت ذرا ایک اور جملہ کر لیں. زیدن فی الدار، زیدن فی الدار، ترکیب کریں. زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، فی جارہ اداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ سبتا یا ثابتن، جو بھی نکال لیں، یہ متعلق ہوئے سبتا سے. سبتا فیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ زید مبتدا کو راجے، کیونکہ خبر کو مبتدا سے جوڑتے ہیں. فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زیدن فی الداری. جی مضمون جملہ نکالیں. آپ کہیں گے بھائی خبر کیا ہے؟ فی الدار ہے. اس کا تو اس کا کیا مصدر ہو سکتا ہے؟ بھائی فی الدار کو کس سے جوڑا؟ ثابتن یا ثابتا سے. تو اس ثابتا یا ثابتن کا مصدر نکال لو، اور وہ کیا ہے؟ ثبوت. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اس ثبوت کی مصدر کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف، ثبوت زیدن، ثبوت زیدن، اور جار مجرور کو اسی طرح ساتھ جوڑ دو، ثبوت زیدن فی الدار. اب آپ سے کوئی پوچھے زیدن فی الدار، اس جملے کا مضمون کیا، آپ کیا کہیں گے؟ ثبوت زیدن فی الدار. کہ یوں کہو، یوں کہو، اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ثبوت زیدن فی الدار بیان ہو رہا ہے. اردو میں ترجمہ کرو ثبوت زیدن فی الدار، زید کا گھر میں ہونا یہ بیان ہو رہا ہے. اس جملے میں زید کا گھر میں ہونا بیان ہو رہا ہے، ثبوت زیدن فی الدار. طریقہ سمجھ میں آیا مضمون جملہ کس طرح نکالتے ہیں؟ اب دیکھیے بھائی، بات چل رہی تھی کہ افعال قلوب جو ہیں ان کے ایک مفعول کو حذف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا یہ جائز نہیں، क्यों? क्योंकि यहां जो मफूल होता है वो दरअसल मजमून जुमला होता है। ये जो दो मफूल हैं आपस में किसके दर्जे में हैं? मुब्तदा खबर के दर्जे में हैं। तो दरअसल यहां मफूल मजमून जुमला है। मसलन जुमला क्या था? आलिम तो जैदन काइमन, मसलन काइमन को ले आए, आलिम तो जैदन काइमन, तो आलिम तो फेल अफाल कुलूब, ताजमीर इसका फाइल, और जैदन मफूले अव्वल और काइमन मफूले सानी। लेकिन यहां देखने में तो जैदन और काइमन मफूल हैं, लेकिन हकीकत में मफूल क्या है आलिम तू का? मजमून जुमला। मजमून जुमला निकालो जैदन काइमन का, कियामु जैदिन, कियामु जैदिन। तो गोया असल कलाम यूं है, आलिम तो कियाम जैदिन, आलिम तो कियाम जैदिन। देखा कियाम ये मनसूब है, क्यों मनसूब? क्योंकि ये आलिम तो के लिए मफूल बना और जैदिन तो मुजाफुन इलैह है। मैंने कियाम जैद को जान लिया। तो अफाल कुलूब में एक मफूल को हजफ करना और दूसरे को बाकी रखना जायज नहीं। क्यों? क्योंकि यहां हकीकत में जो मफूल है वो मजमून जुमला है। बात समझ में आ गई? तो अगर इसमें से एक को हजफ कर देंगे, एक को बाकी रखेंगे, तो ये तो गोया आपने एक जुज को ही क्या कर लिया? हजफ कर लिया। अच्छा, तो मजहब बयान हो रहा था बसरा वालों का। बसरा वाले क्या कहते हैं कि अगर सानी को आमिल बनाएं और पहला फाइल का तकाजा कर रहा हो तो उसमें फाइल की जमीर ले आएंगे, और अगर पहला मफूल का तकाजा कर रहा है तो मफूल को हजफ कर देंगे। ये उस वक्त है जब मफूल को हजफ करना जायज हो, और अगर ये फेल अफाल कुलूब में से है उसके तो मफूल को हजफ करना जायज नहीं, फिर क्या करेंगे? तो कहते हैं फिर इस सूरत में उस मफूल को दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि जमीर भी नहीं ला सकते क्योंकि इजमार कबला जिक्र फजला में जायज नहीं, और हजफ भी नहीं कर सकते क्योंकि अफाल कुलूब के एक मफूल को हजफ करना जायज नहीं। तो तीसरी सूरत फिर यही रह गई कि उसको दोबारा जिक्र किया जाएगा। अब अपने सामने जरा मिसाल लिखिए, इससे यह मसला आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। भाई लिखिए भाई, हसीबानी हसीबानी, हसीबनी के बाद एक लफ्ज की जगह खाली छोड़ दें और आगे लिखें व हसीब तू जैद मुंतलिक मुंतलिक मीम नून और त्वा है भाई त्वा और लाम और काफ दो नुक्तों वाला मुंतलिक इंतलका यंतलिक इंतलाक के माने हैं चलना भाई चलना। क्या लिखा? हसीबनी व हसीब तो जैद मुंतलिक भाई, और हसीबनी के बाद एक लफ्ज की जगह आपने छोड़ दी। अच्छा तो देखो हसीबनी और हसीब तो ये झगड़ा कर रहे हैं जैद और मुंतलिक के बारे में। हसीबनी चाहता है मैं आमिल बनूं और हसीब तू चाहता है मैं आमिल बनूं। हसीबनी ये अफाल कुलूब में से है, ये एक फाइल चाहता है और दो मफूल चाहता है। इसके साथ हसीबनी एक मफूल जुड़ा हुआ है, और आगे ये जैदन को अपना फाइल बनाना चाहता है और मुंतलिक को ये अपना मफूल बनाना चाहता है। तवज्जो है भाई, अफाल कुलूब है ना, अफाल कुलूब एक फाइल चाहता है और दो मफूल, तो हसीबनी के साथ एक मफूल तो जुड़ गया साथ, हसीबनी ये या जमीर है, तो इसके लिए फाइल भी चाहिए और एक मफूल भी चाहिए। तो ये चाहता है आगे जो जैद आ रहा है उसको मैं अपने लिए फाइल बनाऊं, और जो मुंतलिक आ रहा है उसको मैं अपने लिए मफूल बनाऊं। और अगला फेल हसीब तो वो भी अफाल कुलूब में से है, वो भी एक फाइल चाहता है और दो मफूल चाहता है, तो उस हसीब तो के साथ ये जो ताज अमीर है ये फाइल की जुड़ी हुई है, ये चाहता है आगे जैदन को अपने लिए मफूले अव्वल बनाए और मुंतलिक को अपने लिए मफूले सानी बनाए। और मजहब किसका बयान हो रहा है? बसरा वालों का। तो सानी को आमिल बनाया तो इस हसीब तू ने जैदन को नसब दे दिया, इसको अपने लिए मफूले अव्वल बनाया, तो जैद को जैदन कर दें भाई। यह नसब किसने दिया? हसीबतू ने। और मुंतलिक को मुंतलिकन कर दें, इसको भी हसीबतू ने नसब दे दिया, इसको अपने लिए मफूले सानी बना लिया। तो जैदन ये हसीबतू के लिए मफूले अव्वल बना और मुंतलिकन इसके लिए मफूले सानी बन गया। बात समझ में आ गई? और पहला फेल हासिबानी क्या चाहता था जे, वो एक फाइल चाहता था और एक मफूल। हासिबानी एक मफूल तो साथ जुड़ा हुआ है, एक ये फाइल का तकाजा कर रहा है एक मफूल का। जब सानी को आमिल बना दिया तो हसीबनी के अंदर फिर फाइल की तो जमीर ले आएंगे, क्योंकि अगर सानी को आप आमिल बनाएं और पहला फाइल का तकाजा कर रहा हो तो उसमें क्या करते हैं, फाइल की जमीर ले आते हैं। तो हसीबनी के अंदर हुआ जमीर आ गई, और यह हुआ जमीर किसको राजे, जैद को राजे, किसको, जैद को। और यह इजमार कबला जिक्र है, लेकिन इजमार कबला जिक्र उमदा में जायज है बशर्ते तफसीर, क्योंकि हुआ जमीर आई, इबहाम पैदा हुआ कि किसको राजे है। आगे वह हसीब तो जैदन, यह जैदन ने आकर तफसीर कर दी, यह मर्जे आ गया कि हुआ जमीर किसको राजे, जैद को राजे। तो यह है इजमार कबल जिक्र बादत तफसीर भाई, और यह उमदा में जायज है। अब देखो हसीबनी के अंदर हुआ जमीर फाइल की आ गई या जमीर मफूल अव्वल है, आगे जो मुंतलिकन आ रहा था ये उसको मफूल सानी बनाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर आमिल किसको बनाया आपने, हसीबतु को आमिल बना दिया। अब इस हसीबनी के लिए मफूल चाहिए, मफूल सानी चाहिए। तो एक सूरत ये कि मफूल को हजफ कर दें, क्या कर दें, हजफ कर दें, लेकिन हजफ कर नहीं सकते क्योंकि अफाल कुलूब में से है, यह हसीबानी किस में से है, अफाल कुलूब में से है, और इसके एक मफूल को बाकी रखना और एक को हजफ करना जायज नहीं। दूसरी सूरत यह है कि उसकी जमीर ले आए, जमीर ले आए जो किसको राजे हो, उस मुंतलिकन को राजे हो, लेकिन इस सूरत में तो इस्मार कबला जिक्र की खराबी लाजिम आएगी, जमीर पहले आ गई और मर्जे बाद में है, और यह किस में है, उमदा में है या फजला में है, फजला है, यह तो मफूल है भाई, मफूल चाहिए ना हसीबानी के लिए। मसलन देखो हसीबानी के बाद हम इयाहू जमीर ले आते हैं, क्या ले आते हैं, इयाहू जमीर ले आते हैं, यह मफूल सानी है हसीबानी के लिए, लेकिन यह तो इजमार कबल जिक्र लाजिम आया, और किसमें लाजिम आया, फजला के अंदर, और यह जायज नहीं, मालूम हुआ जमीर भी नहीं ला सकते, हजफ भी जायज नहीं क्योंकि यह अफाल कुलूब में से है, जमीर भी नहीं ला सकते क्योंकि क्योंकि इजमार कबला जिक्र फजला में जायज नहीं। तो आखिरी सूरत यही रह गई कि उस मुंतलिकन को दोबारा ले आए भाई, लिहाजा ये जो हसीबनी के बाद एक लफ्ज की जगह आपने छोड़ी थी, यहां मुंतलिकन को लिख लें भाई, मुंतलिकन लिख लिया, ये मुंतलिकन ये मफूल सानी है हसीबनी के लिए, हसीबनी के अंदर हुआ जमीर फाइल की है या जमीर मफूल अव्वल है, और मुंतलिकन इसका मफूल सानी है भाई। तो जुमला क्या बन गया, हसीबनी मुंतलिकन व हसीबतु जैदन मुंतलिकन, जैद ने मेरे बारे में गुमान किया कि यह चलने वाला है, यानी यह चल रहा है, और मैंने जैद के बारे में गुमान किया कि वह चल रहा है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या कि बसरा वालों के मजहब के मुताबिक सानी को आमिल बनाते हैं, तो फिर अव्वल फाइल का तकाजा करेगा या मफूल का, अगर पहला फेल फाइल का तकाजा करे तो उसमें फाइल की जमीर ले आएंगे, और अगर वो मफूल का तकाजा करे तो मफूल को हजफ कर देंगे, और अगर मफूल को हजफ करना मुमकिन ना हो यानी वो फेल अफाल कुलूब में से हो तो फिर उस मफूल को दोबारा लेकर आएंगे, उसको हजफ भी नहीं कर सकते और उसकी जमीर लाना भी जायज नहीं, क्योंकि वरना तो इजमार कबला जिक्र की खराबी लाजिम आएगी फजला के अंदर, और वह जायज नहीं भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर पहले मतन मतन देखिए, व हजफ तल मफूला, और आप मफूल को हजफ कर देंगे, इनिस्तुगनिया अनहु, अगर उससे बेनियाजी हासिल हो, आप मफूल को हजफ कर देंगे अगर उससे बेनियाजी हासिल हो, यानी उसके बगैर भी काम चल सकता हो तो मफूल को हजफ कर देंगे, और अगर उससे बेनियाजी हासिल ना हो यानी उसको हजफ नहीं कर सकते यानी वो फेल अफाले कुलूब में से है तो फिर आपको दोबारा उस मफूल को लाना पड़ेगा। तो कहते हैं वह हजफ तल मफूला, और आप मफूल को हजफ करेंगे, इनिस्तुगनिया अनहु, अगर उस मफूल से बेनियाजी हासिल हो यानी उसको हजफ किया जा सके, वह इल्ला, और अगर ऐसा ना हो यानी उससे बेनियाजी ना हो यानी उसको हजफ न किया जा सके, अज़हरता, तो आप क्या करेंगे, उस मफूल को दोबारा जाहिर करेंगे यानी इसमें जाहिर की सूरत में लाएंगे, हजफ भी जायज नहीं, इजमार कबल जिक्र भी जायज नहीं, तो आखिरी सूरत यही है कि दोबारा इसमें जाहिर की सूरत में ले आए भाई। बात समझ में आ गई। जी अब शरा के साथ इसको देखिए, कहते हैं वह हजफ तल मफूला, और आप मफूल को हजफ कर लेंगे। बात क्या चल रही है कि आपने आमिल किसको बनाया, सानी को, और पहला किसका तकाजा करे, मफूल का, तो मफूल को क्या कर लो, हजफ, क्योंकि तीन एहतमाल हैं, तीन सूरतें बन सकती हैं, या मफूल को दोबारा लाओ, या मफूल की जमीर लाओ, या मफूल को क्या कर दो, हजफ। मफूल को दोबारा लाएंगे तो तकरार लाजिम आएगा, एक ही इसम दो बार आ रहा है और तकरार बगैर नुक्ते के और बगैर वजह के पसंदीदा नहीं, और जमीर भी नहीं ला सकते क्योंकि इस्मार कबला जिक्र फजला में जायज नहीं, तो आखिरी सूरत क्या रह गई, उसको क्या कर देंगे, हजफ। तवज्जो है, यह आम अफाल की बात हो रही है, अफाल कुलूब की बात अब आगे करेंगे। कहते हैं वह हजफ तल मफूला, और आप मफूल को हजफ कर लेंगे, यानी जब पहला फेल मफूल का तकाजा कर रहा हो। तहर रुजान आनी तकरारी लव दुकीरा, तकरार से बचने के लिए लव जुकीरा, अगर उसको जिक्र कर दिया जाए, अगर मफूल को जिक्र कर देंगे फिर तो तकरार लाजिम आएगा और तकरार तो पसंदीदा नहीं। वह अनिल इजमार कबला जिक्री, और इजमार कबला जिक्र से बचने के लिए फिल फजलाती, किसके अंदर, फजला के अंदर, लव उजमीरा, अगर जमीर लाई जाए, अगर जमीर लाई जाए फिर तो इजमार कबला जिक्र फजला में लाजिम आएगा, लिहाजा और उससे तो बचना जरूरी है, लिहाजा जमीर भी नहीं ला सकते और दोबारा जिक्र भी नहीं कर सकते, वरना तो तकरार लाजिम आएगा, तो आखिरी सूरत क्या रह गई कि उसको फिर क्या कर लेंगे, हजफ कर लेंगे। इन इस्तुग्नियान हो, अगर उससे बेनियाजी हासिल हो गई, यानी उसको हजफ किया जा सके। व इल्ला, ये व इल्ला, भाई मैंने पहले भी कई दफा बताया होगा कि ये इल्ला से पहले अगर वाव आ जाए तो ये इस बात की अलामत है कि ये इल्ला इस्तिस्ना के लिए नहीं, इस्तिस्ना के लिए एक इल्ला आता है, वो एक ही हर्फ है, और ये जो इल्ला से पहले वाव आ जाए ये वो इस्तिस्ना वाला इल्ला नहीं है, बल्कि ये दर असल है इन और ला, व इन ला, तो नून को भी लाम करके लाम में इदगाम कर दिया गया तो क्या बन गया, इन ला, तो ये दरअसल दो हुरूफ हैं इन और ला, और असल में इबारत यूं है, व इल्लम यकुन कज़ालिक, अगर ऐसा ना हो, व इल्लम यकुन, पीछे क्या बताया कि आप मफूल को हजफ कर लेंगे अगर मफूल से बेनियाजी हासिल हो, और अगर ऐसा ना हो, यानी मफूल से बेनियाजी हासिल ना हो, अजहरता, फिर क्या करेंगे, उसको दोबारा इसमें जाहिर की सूरत में लाएंगे। तो ये इल्ला किससे मुरक्कब है, इन ला से, और असल इबारत क्या है, व इल्लम यकुन कज़ालिक, अगर ऐसा ना हो, ये जो है ना इबारत व इल्लम यकुन कज़ालिक, अगर ऐसा ना हो, ये हर जगह लग जाती है ये इबारत, लेकिन मौके के मुताबिक, उसी के मुताबिक भी आप इबारत बना सकते हैं। मसलन यहां क्या है कि मफूल को, इधर देखिए कि आप मफूल को हजफ करेंगे अगर उससे बेनियाजी हासिल हो, व इल्ला, और अगर उससे बेनियाजी हासिल ना हो, तो अजहर था, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा इसमें जाहिर, तो आप चाहे यूं कह लें वइल्लम यकुन कज़ालिक, और अगर ऐसा ना हो तो अजहर था, आप क्या करेंगे, दोबारा इसमें जाहिर लाएंगे, और आप चाहें तो वह इल्लम युस्तगना अनहु, और अगर उससे बेनियाजी हासिल, बात समझ में आ रही है, तो कहते हैं वह इल्ला व इल्लम युस्तगना अनहु, और अगर उस मफूल से बेनियाजी हासिल ना हो, यानी उसको हजफ न किया जा सके, अजहर ता अयिल मफूला, तो आप जाहिर करेंगे अयिल मफूला, यानी मफूल को, ये अल मफूला निकालकर बतला दिया कि अजहरता फेल का मफूल महजूफ है, और वो लफ्ज मफूल है भाई, अजहरतल मफूल, आप उस मफूल को दोबारा इसमें जाहिर की सूरत में ले आएंगे। इबारत समझ में आ गई, यहां याद रखो, यहां आया इनिस्तुगनिया अनहु, भाई एक कीमती नहवी नुक्ता याद रखना, यहां आया इनिस्तुगनिया अनहु भाई, अगर उससे बेनियाजी हासिल हो, उस्तुगनिया फेले मजहूल आया, इस्तिगना तो फेले लाजिम है, इस्तिगना फेले लाजिम है, और फेले लाजिम उसके लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ फाइल, मफूल नहीं आता, अब उसी से फेले मजहूल बना लिया गया उस्तुगनिया अनहु, और फेले मजहूल में क्या करते हैं, मफूल को नाई फाइल बनाते हैं, तवज्जो है, लेकिन इस्तिगना का तो कोई मफूल ही नहीं था, तो अब किसको नाई फाइल बनाएंगे, क्या है नाई फाइल भाई, तो बाज औकात याद रखो, बाज औकात इबारतों में कोई फेल आता है और उसके फाइल या नाइब फाइल का पता नहीं चलता, यहां तो फेले मजहूल है, फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए? नायबुल फाइल। और बाज औकात फेले मारूफ आता है, और फेले मारूफ के लिए क्या चाहिए? फाइल। तो बाज औकात कोई फेल इबारत में आता है, वो फेले मारूफ होता है लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि इसका फाइल क्या है, और बाज औकात फेले मजहूल आता है और यह पता नहीं चलता कि इसका नायबुल फाइल क्या है। तो याद रखो उसमें एक आसान तरीका यह है कि फाइल या नाइब फाइल जो उस फेल के अंदर जमीर होती है उसको उसी के मस्तर की तरफ लौटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसी के मस्तर की तरफ लौटा दिया जाता है, यानी उसी का मस्तर जो है उसी को फाइल या नाइब फाइल बना देते हैं। यहां जैसे यहां है उस्तुगनिया अनहु, उस्तुगनिया के अंदर हुआ जमीर किसको राजे, तो हुआ जमीर इसी उस्तुगनिया का मस्तर। उस्तुगनिया का मस्तर क्या? इस्तगना यस्तगनी इस्तगना अन, तो यह हुआ जमीर इस्तगना को राजे है। किसको? इस्तगना को। तो इन इस्तुगनिया हुआ, यह हुआ जमीर किसको राजे? इस्तगना को। इसकी जगह जरा इस्तगना ले आओ, इन इस्तुगनियल इस्तगनाउ, इन इस्तुगनियल इस्तगनाउ। तवज्जो है? तो जमीर उसी फेल के मस्तर को राजे कर दी जाती है। फिर इसका तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमे का भी तरीका याद रखो, याद रखो फिर इसका तर्जमा यकाऊ या हसला के साथ कर लेंगे। देखो इधर उस्तुगनियल इस्तगनाऊ यकाऊल इस्तगनाऊ, इस्तगना वाकई हो जाए, या हसलल इस्तगनाऊ, इस्तगना हासिल हो जाए, यकाऊ या हसला के साथ उसकी तफसीर कर दें। फिर सुने उस्तुगनिया के अंदर हुआ जमीर किसको राजे? इसी के मस्तर इस्तगना को। तो गोया इबारत क्या बन गई? उस्तुगनियल उस्तुगनियल इस्तगनाउ। फिर इसका तर्जमा कैसे करेंगे? यकाउल इस्तगनाउ, इस्तगना वाकई हो जाए, या हसलल इस्तगनाउ, इस्तगना हासिल हो जाए, अनहु उस मफूल से। अब तर्जमा सुनो, इन इस्तुगनिया अनहु, और अगर यकाउल इस्तगनाउ अनहु उस मफूल से इस्तगना वाकई हो जाए, या हसलल इस्तगनाउ अनहु और अगर उस मफूल से इस्तगना हासिल हो जाए, बेनियाजी हासिल हो जाए। तर्जमे का तरीका आ गया। इसी तरह एक किताब थी सुल्लम भाई मंतिक की, जिसको अब तो निसाब से निकाल दिया गया है, उसके अंदर इबारत आती थी वह इल्ला लदारा औ तसलसला, और अगर ऐसा ना हो लदारा, दारा दौर से है, दौर से है तो दौर लाजिम आएगा, और तसलसला या तसलसुल लाजिम आएगा। दौर इसको कहते हैं कि एक चीज मौकूफ हो जाए उस चीज पर जो खुद इस पर मौकूफ है, इसको दौर कहते हैं, और इसमें एक भी चीज का पता नहीं चलता और यह बातिल है। मसलन किसने आपसे पूछा जैद का घर कहां है, आपने कहा बकर के घर के सामने, फिर पूछा बकर का घर कहां है, आपने कहा जैद के घर के सामने। अब देखो इसमें दोनों में से एक का भी पता नहीं चल सकता। जैद के घर का तब पता चलेगा जब आपको किसका पता चले, बकर के घर का, और बकर के घर का तब पता चलेगा जब आपको जैद के घर का पता चले। तो जैद के घर का जानना मौकूफ हो गया बकर के घर पर, और बकर के घर का जानना मौकूफ हो गया जैद के घर पर, तो दोनों में से एक का भी पता नहीं चल सकता भाई। तो इसको कहते हैं दौर भाई, क्या कहते हैं? और इसमें एक भी चीज का पता नहीं चलता, तो दौर भी बातिल। इसी तरह तसलसुल भी बातिल है, तसलसुल भी, तसलसुल कहते हैं एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आए। मसलन देखो मनातिका, ये यूनान वाले थे मंतिकी, और ये मंतिकी और फलसफी, लेकिन ये भी वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह ताला को मानते थे, अगरचे अपनी तरफ से उन्होंने चीजें उसमें घड़ी हुई थी कि वाजिबुल वजूद कैसी जात होगी, लेकिन मानते थे। वजह यह कि अगर वाजिबुल वजूद को ना माना जाए तो तसलसुल लाजिम आता है, और वो भी कहते थे तसलसुल नहीं हो सकता। मसलन किस तरह तसलसुल, ये याद रखो ये कायनात की जितनी चीजें हैं ये सब मुमकिनात हैं, क्या हैं? और हर मुमकिन चीज के लिए कोई बनाने वाला चाहिए, हर मुमकिन चीज के लिए कोई बनाने वाला चाहिए। तो मसलन एक चीज है, अगर इसको बनाने वाला भी मुमकिन है, मालूम है उसको भी किसने बनाया है, तो उसके लिए भी कोई बनाने वाला चाहिए। अगर उसको बनाने वाला भी कोई मुमकिन है, मालूम है उसके लिए भी क्या चाहिए, कोई बनाने वाला। अगर उसको बनाने वाला भी मुमकिन है तो उसके लिए भी एक बनाने वाला चाहिए। तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा, कहीं रुकेगा ही नहीं, हालांकि ये बातिल है, ये नहीं हो सकता, ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। तो चुनांचे मजबूर होकर उन्होंने मान लिया कि कोई एक जात है जिसने इन चीजों को बनाया है। अगर उस जात को हम नहीं मानेंगे तो तसलसल लाजिम आएगा, एक चीज को बनाने वाला दूसरी चीज, दूसरी चीज को बनाने वाली कोई तीसरी चीज, तीसरी चीज को बनाने वाली कोई चौथी चीज, यह सिलसिला चलता ही रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। तो दौर भी बातिल और तसलसल भी बातिल। तो मैं इबारत जिक्र कर रहा था, वह इल्ला लदारा औ तसलसला, दारा फेले माजी है, तसलसला यह भी फेले माजी है। अब इसका फाइल क्या है, यह हुआ जमीर किसको राजे, दारा के अंदर और तसलसला के अंदर? तो तरीका मैंने बता दिया, कुछ पता नहीं चल रहा कि हुआ जमीर किसको राजे, तो फिर क्या करते हैं, इसके अंदर जो जमीर है इन्हीं के मस्तर को राजे करेंगे। तो दारा की जमीर दौर को राजे, आई लदारा दौरू, और तसलसला की जमीर तसलसुल मस्तर को राजे, लतसलसल तसलसुलू। इबारत समझ में आ गई, वह इल्ला लदारा दौरू और तसलसल तसलसुलू। अच्छा, अब फिर इसका तर्जमा कैसे करेंगे, तर्जमे का तरीका भी मैंने बता दिया, क्या यकउ दौरू या हसल दौरू, और यकउ तसलसुलू या हसल तसलसुलू, व इल्ला लदारा औ तसलसला, वरना व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो तो लदारा दौरू अयकउ दौरू, तो दौर वाके होगा, और तसलसल तसलसुलू अयकउ तसलसुलू, तसलसुल वाके होगा। अगर ऐसा ना हो तो दौर वाके होगा या तसलसुल वाके होगा। तरीका समझ में आ गया। तो बाज औकात फील के फाइल या नाइब फाइल का पता नहीं चलता, तो उस सूरत में उस फेल की जमीर को उसी के मस्तर की तरफ राजे कर दिया जाता है और उसका तर्जमा यकाउ या हसला वगैरह के साथ किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, इन इस्तुग्निया अनहु, एक तरकीब तो यह कि उस तुगनिया के अंदर हुआ जमीर किसको राजे, इसी के मस्दर को, अयकाउल इस्तेगना, इस्तेगना वाके होगा, आन हो किससे, किससे, किसकी बात चल रही है, मफूल से। अगर मफूल से इस्तेगना हासिल हो तो फिर उसको क्या करेंगे, हजफ करेंगे। तवज्जो है, तो आन हो की हा जमीर किसको राजे, माकबल में जो मफूल का जिक्र आया उसको राजे। ये तो एक सूरत थी कि उस्तुगनिया की जमीर किसको राजे कर दी, मस्दर को। दूसरी सूरत ये है, याद रखो कीमती बात, कि ये जो जार मजरूर फेल के साथ आ जाए उसी को उसका नाइब फाइल बना दिया जाए, इसी को फेले मजहूल के अंदर हुआ जमीर या तो उसी के मस्दर को राजे कर दें, या अगर साथ जार मजरूर है तो इस जार मजरूर को उसका नाइब फाइल बना दें, वो जमीर मस्तर को ना राजे करें, इसके अंदर जमीर निकालें ही ना, उस तुगनिया के अंदर कोई जमीर नहीं, बल्कि यही अनहु, ये जो जार मजरूर है यही इसका नाइबुल फाइल है। ये फेले मजहूल है ना, इसके लिए क्या चाहिए, नाइब। तवज्जो है, तो फेले मजहूल के जब नाइबुल फाइल का पता ना चल रहा हो तो एक तरीका क्या कि इसके अंदर हुआ जमीर जो किसको लौटा दें, इसी के मस्दर को। दूसरा तरीका क्या कि इसके साथ अगर जार मजरूर हो तो उसी जार मजरूर को इसका नाइब फाइल बना दें। तो दूसरी तरकीब यह, अब उस तुगनिया के अंदर कोई जमीर ना निकालें, इसी अनहु जार मजरूर को इसका नाइब फाइल बना दें। और जार मजरूर को क्या कहते हैं, जर्फ, जर्फ मजाजन जर्फ कहते हैं। तो यूं कहेंगे यह अनहु जर्फ जो है, या यह अनहु जार मजरूर जो है, यह उस तुगनिया का नाइबुल फाइल है। अब ये नाइबुल फाइल होता कैसे है, जार मजरूर कैसे नाइबुल फाइल बनता है, इसको समझ लें भाई, कीमती बात बतलाने लगा हूं भाई। हमेशा याद रखो, ये जार मजरूर के नाइब फाइल होने का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये याद रखें कि ये जार मजरूर इसी से मुतअल्लिक होता है। जो जार मजरूर जिसको नाइबुल फाइल बनाया जाए वो उसी फेल से मुतालिक होता है। तो ये आनहू जार मजरूर है, और जार मजरूर के लिए मुतअल्लक चाहिए, तो इसका मुतअल्लक क्या है, उस तुगनिया, ये इसी से मुतालिक है। और फिर इसमें याद रखें, ये आन, आन तो हरफे जर है, आगे जो हा जमीर है असल में ये नाइबुल फाइल है, असल में ये नाइबुल फाइल है, लेकिन सारे को नाइबुल फाइल कह दिया जाता है क्योंकि आन तो हर्फ है भाई, क्या है, तो यूं कह दें ये जार मजरूर इसका नाइब फाइल है, लेकिन माना क्या होता है दरअसल, कि वो जो जमीर जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो क्या है, हकीकत में नाइबुल फाइल है। तवज्जो है, तो कैसे कहेंगे उस्तुगनिया फेल और अनहू जार मजरूर इसका नाइबुल फाइल। तो हर जगह इसी तरह होगा, आपने फिर परेशान नहीं होना कि जार मजरूर कैसे नाइब फाइल बनेगा। पहली बात तो यह याद रखना वह जार मजरूर उसी से मुतालिक होगा, और दूसरी बात यह याद रखना कि पूरा जार मजरूर नाइब फाइल नहीं है, यह वैसे मजाजन एक कलाम किया जाता है। हकीकत में क्या है, जो मजरूर है वह हकीकत में नाइबुल फाइल है, चाहे वह जमीर हो चाहे कोई इसम वगैरह हो, जो भी मजरूर होगा हकीकत में वह नाइबुल फाइल है। तवज्जो है, अब इस हा जमीर का एराब क्या है, एराब क्या है, तो याद रखो जमीर है, और जमीर किस में से, मबनियात में से, और मबनी का एराब कैसे बताते हैं, महलन बतलाते हैं। तो अनहू की यह जो हा जमीर है यह महलन मजरूर है, क्योंकि अन दाखिल है, अन हरफे जर क्या करता है, जर, तो यह मजरूर महलन है, और यह इसका महल्ले करीब है। इसका महल्ले करीब क्या, मजरूर, महल्ले करीब क्या, मजरूर, और महल्ले बईद है इसका, यह मरफू है, नाइबुल फाइल है उस्तुगनिया के लिए। बात समझ में आ गई क्या, कि ये जमीर है और जमीर का एराब कैसे बताते हैं, महल्लन, तो महल्लन इसका एराब एक महल्ले करीब हुआ, एक महल्ले बईद। महल्ले करीब क्या, मजरूर है, क्योंकि अन जारा दाखिल है वो जर देता है, और महल्ले बईद क्या, कि ये नाइबुल फाइल है, मरफूअ है, किसके लिए नाइबुल फाइल है, उस्तुगनिया के लिए। बात समझ में आ गई, तो जहां कहीं इबारत में ये आ जाए कि ये जार मजरूर नाइब फाइल है, तो आप समझ जाएं कि असल में नाइबुल फाइल कौन है, वो जो जमीर साथ जुड़ी हुई है। भाई आगे देखिए, तो कहते हैं आप मफूल को हजफ करेंगे, इन इस्तुगनिया अन्हू, अगर उस मफूल से बेनियाजी हासिल हो, व इल्लम युस्तगना अन्हू, और अगर उस मफूल से बेनियाजी हासिल ना हो, यानी उसको हजफ नहीं किया जा सकता, अजहरता अयल मफूला, तो आप जाहिर करेंगे यानी मफूल को, यानी उसको इसमें जाहिर की सूरत में लाएंगे, नहु मिसाल के तौर पर, हसीबनी मुंतलिकन व हसीब तुजैदन मुंतलिकन, ये मिसाल समझ में आ गई, लिअन्नहु ला यजूज़ हस्फु अहदी मफ़ऊलै बाबी हसीबतु, इसलिए क्योंकि जायज नहीं है हजफ करना किसको, अहदी मफ़ऊलै बाबी हसीबतु, असल में था अहदी मफ़ऊलैनी, दो मफ़ऊलों में से एक, भाई फिर इस नून को इजाफत की वजह से हजफ कर दिया, तो आहादी मफूले बाबी हसीबतु, बाबे हसीबतु के दो मफूलों में से एक को, उसको हजफ करना जायज नहीं। कहते हैं लिया नहूला यजूज हसफ आहादी मफूले बाबे हसीबतु, इसलिए क्योंकि जायज नहीं है कि बाबे हसीबतु के दो मफूलों में से एक को हजफ कर लिया जाए, वला यजूज इज मारूहू, और उसकी जमीर लाना भी जायज नहीं, क्यों, लिअल्ला यल्जमल इजमारू कबला जिक्र फिल फजलती, ताकि फजला के अंदर इजमार कबला जिक्र लाजिम न आए। यहां तक बात समझ में आ गई, ये थी तफसील बसरा वालों के मजहब की। हासिल कलाम क्या, बसरा वालों के नजदीक किसको आमिल बनाना, औला सानी को, फिर पहला या मफूल का तकाजा करेगा या फाइल का, अगर पहला फाइल का तकाजा कर रहा है तो उसमें फाइल की जमीर ले आओ, और अगर वो मफूल का तकाजा कर रहा है तो फिर अगर वह अफाले कुलूब में से नहीं है तो मफूल को क्या कर लो, हजफ कर लो, और अगर वह अफाले कुलूब में से है तो दोबारा उस मफूल को इसमें जाहिर की सूरत में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, व इन अमल तलफ़ अल अव्वला, और अगर आप पहले फेल को अमल दें। अब कूफा वालों का मजहब आ गया, कूफा वालों के मजहब की मिसालें लिख लीजिए भाई, इसकी भी हम मुकम्मल मिसालें कर लेते हैं, फिर आपके लिए इबारत को समझना आसान होगा। भाई भाई इधर देखिए, हम कूफा वालों का मजहब करेंगे, और कूफा वाले किसको आमिल बनाते हैं, पहले को, कूफा वाले पहले को आमिल बनाते हैं, और फिर चार किस्म की मिसालें करेंगे हम। पहली सूरत जिसमें दोनों फेल फाइलियत के बारे में झगड़ा करेंगे, दूसरी सूरत जिसमें दोनों फेल मफ़ऊलियत के बारे में झगड़ा करेंगे, तीसरी सूरत यह है कि पहला फेल फाइलियत का तकाजा करेगा और दूसरा मफ़ऊलियत का, और चौथी सूरत यह है कि पहला मफ़ऊलियत का तकाजा करेगा और दूसरा फाइलियत का। यहां तक बात समझ में आ गई, जी लिखिए मिसाल भाई, ऊपर लिख लें कूफा वालों का मजहब। लिखिए भाई पहली मिसाल जिसमें दोनों फेल फाइल का तकाजा कर रहे हों, जराबानी व अक्रमानी जैद, जराबानी व अक्रमानी जैद। दूसरी मिसाल इसी के नीचे लिखिए जराबानी व अक्रमानी अज़ैदानी, जराबानी व अक्रमानी अज़ैदानी। तीसरी मिसाल लिखिए जराबानी व अक्रमानी अज़ैदूना, जराबानी व अक्रमानी अज़ैदूना। देखो ये दोनों फेल फाइल का तकाजा कर रहे हैं, जराबानी के साथ या जमीर मफूल के साथ जुड़ी हुई है, इसी तरह अक्रमानी के साथ भी या जमीर मफूल की जुड़ी हुई है, आगे जैद इसमें जाहिर आ रहा है। उस इसमें जाहिर में फिर तीन सूरतें हैं, कभी वह मुफरद होगा, कभी तस्निया होगा, कभी जमा होगा। तो पहली मिसाल पे नजर रखें, जराबानी चाहता है ये जैद मेरे लिए फाइल बने, मैं इसको रफा दूं, और अक्रमानी चाहता है कि ये जैद मेरे लिए फाइल बने, मैं इसको रफा दूं। मजहब चल रहा है कूफा वालों का, आमिल किसको बनाएंगे? पहले फेल को। तो जराबानी ने जैदुन को रफा दे दिया, जैदुन पर तनवीन डाल दें, जैदुन, ये रफा किसने दिया? जराबानी ने। और अक्रमानी के लिए भी तो फाइल चाहिए, तो फिर इसके अंदर फाइल की जमीर ले आएंगे, और फाइल है मुफरद मुजक्कर, तो अक्रमानी के अंदर भी कौन सी जमीर है? हुआ की, वो भी मुफरद मुजक्कर है। बात समझ में आ गई? तो पहली मिसाल बन गई जराबानी व अक्रमानी जैदुन। दूसरी मिसाल पे आइए, जराबानी व अक्रमानी अज़ैदानी, जराबानी चाहता है अज़ैदानी को मैं रफा दूं, अक्रमानी चाहता है मैं रफा दूं, किसको आमिल बनाया? जराबानी को। जराबानी ने अज़ैदानी को रफा दे दिया, तो अब अक्रमा के अंदर अज़ैदानी की जमीर लाएंगे भाई, और अज़ैदानी क्या है? मुफरद है, तस्निया है या जमा है? तस्निया है। तो अक्रमानी के अंदर हमें तस्निया की जमीर चाहिए, तो इसको तस्निया के फेल के साथ बदल दें, अक्रमानी की जगह अक्रमानी अलिफ भी ले आए आप, अक्रमानी, ये अलिफ जमीर किसको राजे? अज़ैदानी को। तवज्जो है, अज़ैदानी को राजे। और नीज इजमार कबला जिक्र की खराबी से भी हम बच गए भाई, किस तरह? अज़ैदानी को रफा किसने दिया? जराबानी ने। तो अज़ैदानी देखने में या लफ्जों के अंदर तो अक्रमानी से मुअख्खर है, लेकिन इसको रफा जराबानी ने दिया है, तो यह जराबानी के फौरन बाद इसका मर्तबा है, मालूम हुआ यह अक्रमानी से रुतबे के एतबार से मुकदम है। तवज्जो है, अज़ैदानी लफ्जों में तो अक्रमानी से मुअख्खर है, लेकिन रुतबे में उससे मुकदम है, तो यह इजमार कबल जिक्र सिर्फ लफ्जन लाजिम आया, रुतबतन लाजिम नहीं आया, और यह जायज है भाई। तो यह दूसरा जुमला क्या बन गया? जराबानी व अक्रमानी अज़ैदानी। तीसरा जुमला जराबानी व अक्रमानी अज़ैदूना, इस अज़ैदूना में दोनों झगड़ रहे हैं, किसको आमिल बनाया? जराबानी को। इसने अज़ैदूना को रफा दे दिया, तो अक्रमानी के अंदर उसकी जमीर लाएंगे, और कौन सी जमीर चाहिए हमें? जमा वाली, क्योंकि अज़ैदूना जमा है, तो अक्रमानी की जगह जमा वाला सीगा ले आओ, अक्रमूनी, अक्रमूनी, ये जमा की जमीर अज़ैदूना को राजे, और अज़ैदूना अक्रमूनी से लफ्जों में तो मुअख्खर है, लेकिन रुतबे के एतबार से मुकद्दम है। तो क्या मिसाल बन गई? जराबानी व अक्रमूनी अज़ैदूना। बात समझ में आ गई? अगली मिसालें लिखिए भाई, जब दोनों मफ़ऊल का तकाजा करें, जराब तू व अक्रम तू जैद, ज़रबतु व अकरमतु ज़ैद। अगली मिसाल लिखिए, ज़रबतु व अकरमतु अज़ैदानी, ज़रबतु व अकरमतु अज़ैदानी। तीसरी मिसाल लिखिए, ज़रबतु व अकरमतु अज़ैदूना, ज़रबतु व अकरमतु अज़ैदूना। लिख लिया? अब देखिए भाई, जराबतु के साथ फाइल की जमीर जुड़ी हुई है और ये आगे जैदन को नसब देना चाहता है, उसको अपना मफूल बनाना चाहता है। अकरमतु के साथ भी ता जमीर फाइल की जुड़ी हुई है और ये आगे जैदुन को अपना मफूल बनाना चाहता है, उसको नसब देना चाहता है। मजहब चल रहा है कूफा वालों का, किसको आमिल बनाएंगे, पहले फेल को। तो जरबतु ने जैद को नसब दे दिया, तो जैद को जैदन बना दें भाई, जैद के पर नसब ले आए जैदन। ये नसब किसने दिया जैद को, जरबतु ने। तो अकरमतु के लिए भी मफूल चाहिए, तवज्जो है। अब इसमें याद रखो, यहां दोनों सूरतें जायज, मफूल को हजफ करना भी जायज क्योंकि मफूल फजला है, और उसकी जमीर भी ला सकते हैं, जमीर भी ला सकते हैं, और जमीर लाना बेहतर है क्योंकि जब जमीर जिक्र होगी और जमीर तो इसी जैद को राजे होगी तो पता चल जाएगा कि यह मफूल यही है, और अगर आप मफूल को बिल्कुल हजफ कर दें तो फिर पता नहीं चलेगा कि यही मफूल है जो आगे जिक्र है या कोई और जात है भाई। तो जमीर लाएंगे, कौन सी जमीर लाएंगे जो किसको राजे होगी, जैद को, और जैद क्या है, मुफरद मुजक्कर, तो अकरमतु के साथ मुफरद मुजक्कर की जमीर जोड़ दें। व अकरमतुहु, व अकरमतुहु, तो क्या मिसाल बन गई, जरबतु व अकरमतुहु जैदन, जरबतु व अकरमतुहु जैदन। ये जैदन को नसब किसने दिया, जरबतु ने, जरबतु ने। और अकरमतु के लिए मफूल चाहिए था तो उसमें दो सूरतें जायज, आप उस मफूल को क्या कर लें, हजफ कर लें, या उसकी जमीर ले आए, और जमीर लाना औला है, बेहतर है, ताकि पता चल जाए ये ही मफूल है कोई और नहीं। तवज्जो है, देखो अकरमतुहु के अंदर हा जमीर ले आए और ये हा जमीर किसको राजे, जैद को, मालूम हुआ इकराम किसका किया है, जैद का किया है, यही मफूल है। और अगर हा जमीर ना लाते तो अकरमतु, मैंने इकराम किया, किसका इकराम किया कुछ पता ना चलता, बात समझ में आ गई। तो मफूल का हजफ यहां औला है या उसकी जमीर लाना औला, जमीर लाना औला है ताकि पता चल जाए कि किसका इकराम किया है। अकरम तो हु की हा जमीर आ गई और यह हा जमीर किसको राजे, जैद को, तो इसने बतला दिया कि इकराम किसका किया गया है, जैद का किया गया है। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि यह तो इजमार कबला जिक्र है, अकरम तो हु की हा जमीर पहले आ गई और जैदन इसके बाद आ रहा है, जमीर पहले है और मर्जे बाद में है, यह तो इजमार कबला जिक्र है। तो जवाब गुजर चुका कि जैदन का ताल्लुक किसे जुड़ चुका, जराबानी पहले फेल से, उसने इसको नसब दिया था तो इसका ताल्लुक पहले फेल से है। तो देखने में तो जैदन अकरमनी के बाद है लेकिन रुतबे के एतबार से जैदन उस पर मुकदम है, गोया असल कलाम अब यूं है, जराबानी जैदन व अकरमतुहु। जैदन लफ्जों में तो अकरमतु से मुअख्खर लेकिन रुतबे के एतबार से मुकदम है, वो जराबानी के बाद है इसका रुतबा भाई। तो हा जमीर राजे है जैद को और जैद लफ्जों में तो मुअख्खर है लेकिन रुतबे में मुकदम है, तो ये इस्मार कबला जिक्र लफ्जन हुआ, रुतबतन न हुआ, और यह जायज है। अगली मिसाल भाई, जरबतु व अकरमतु अज़ैदानी, जरबतु चाहता है अज़ैदानी को मैं नसब दूं, अकरमतु चाहता है मैं नसब दूं, कूफा वालों का मजहब चल रहा है, किसने नसब दिया, जरबतु ने, जरबतु ने नसब दिया, अज़ैदानी को नसब दे दें, अज़ैदानी को नसब दे दें। यह तस्निया है, तस्निया का नसब किसके साथ आता है, तस्निया का नसब किसके साथ आता है, या के साथ, तो अज़ैदानी को बदल दें अज़ैदैनी से, अज़ैदैनी से। ये अज़ैदैनी को नसब किसने दिया, ज़रबतु ने। अब अकरमतु के लिए भी क्या चाहिए, मफूल। एक सूरत यह कि मफूल को हजफ कर लें, एक सूरत यह कि मफूल की जमीर ले आए, दोनों जायज हैं, मफूल को हजफ करना भी जायज और उसकी जमीर लाना भी जायज, लेकिन बेहतर क्या है, जमीर ले आए। तो जमीर ले आए ऐसी जमीर जो अज़ैदैनी को राजे हो और वो तस्निया मुजक्कर है, तो तस्निया मुजक्कर की जमीर ले आए। व अकरमतु हुमा, तो अकरमतु के साथ हुमा जमीर जोड़ दें, तो जुमला क्या बन गया, जरबतु व अकरमतु हुमा अज़ैदैनी। तरीका समझ में आया भाई। तीसरी मिसाल भाई, ضربت و اکرمت الزیدون, جی الزیدون کو نصب دیں, کون نصب دے گا؟ ضربت, تو الزیدون کو نصب دے دیں. یہ جمع مذکر سالم ہے, جمع مذکر سالم کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو الزیدون کو بدل دیں الزیدین سے الزیدین. یہ نصب کس نے دیا؟ ضربت نے. اور اکرمت کے لیے مفعول چاہیے, چاہے آپ حذف کر لیں چاہے آپ ضمیر لے آئیں, لیکن بہتر کیا ضمیر لے آئیں. تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ الزیدین جمع ہے تو جمع والی ضمیر لائیں گے, جمع کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑ دیں اکرمتو کے ساتھ. واکرمتہم واکرمتہم, تو جملہ کیا بن گیا پورا؟ ہاں ضربتو واکرمتہم الزیدین. الزیدین کو نصب کس نے دیا؟ ضربتو نے. اور اکرمتو کے لیے مفعول کی ضمیر لے آئے. مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں, لیکن پسندیدہ کیا کہ ضمیر لائی جائے. اگلی مثال کیجئے جس میں پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا. ضربنی و اکرمتو زید, ضربنی و اکرمتو زید. اگلی مثال بھی اسی طرح لکھیے, بس صرف اس میں ظاہر کو تثنیہ لے آئیں. ضربنی و اکرمتو الزیدانی, ضربنی و اکرمتو الزیدانی. اگلی مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لے آئیں. ضربنی و اکرمتو الزیدون, ضربنی و اکرمتو الزیدون. پہلا جملہ کیا لکھا؟ ضربنی و اکرمتو زید. ضربنی چاہتا ہے زید کو رفع دے اپنا فاعل بنائے, اکرمتو چاہتا ہے زید کو نصب دے اپنا مفعول بنائے. کس کا مذہب چل رہا ہے؟ کوفہ والوں کا. عامل کس کو بنائیں گے؟ پہلے فعل یعنی ضربنی کو. ضربنی کو عامل بنا دیں, اس نے زید کو رفع دے دیا, زید پر رفع لکھ دیں زیدن. یہ رفع کس نے دیا؟ ضربنی نے. اور آگے اکرمتو کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے. تو اس میں کیا کریں گے؟ مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز, لیکن پسندیدہ کیا؟ ضمیر لائیں. تو ضمیر لے آئیں جو زید کو لوٹے. وہ اکرم تو ہو, ہاں ضمیر مفرد کے ساتھ جوڑ دیں. تو کیا مثال بن گئی؟ ضربنی و اکرم تو ہو زیدن. دوسری مثال پر آئیے, ضربنی و اکرم تو الزیدانی. ضربنی چاہتا ہے زیدانی کو رفع دے, اکرم تو چاہتا ہے نصب دے. کس کو عامل بنائیں گے؟ ضربنی کو. تو الزیدانی پر رفع آ گیا, کس نے دیا یہ رفع؟ ضربنی نے. اب اکرم تو کیا چاہتا ہے؟ مفعول. اور مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز, لیکن پسندیدہ کیا؟ ضمیر لائی جائے. تو ضمیر لے آؤ جو الزیدانی کو لوٹے. شاباش, اکرم تو ہما, ہما ضمیر ساتھ جوڑ دیں اکرم تو کے. ضربنی و اکرم تو ہما الزیدانی, ضربنی و اکرم تو ہما الزیدانی. تیسرا جملہ کیا لکھا تھا؟ ضربنی و اکرمتو الزیدون. یہ الزیدون کو رفع کس نے دیا؟ ضربنی نے. تو اکرمتو کے ساتھ کیا لے آئیں گے؟ مفعول کی ضمیر. کون سی ضمیر لائیں گے؟ جمع مذکر کی ہم ضمیر لائیں گے. تو اکرمتو ہم, اس کے ساتھ ہم ضمیر جوڑ دیں. تو کلام کیا بن گیا, جملہ کیا بن گیا؟ ضربنی و اکرمتو ہم الزیدون. توجہ ہے جی, روانی سے کیسے پڑھیں گے؟ ضربنی و اکرمتہم الزیدون. اگلی مثال لکھیے بھائی, جس میں پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے. ضربتو و اکرمنی زیدن, ضربتو و اکرمنی زید. لکھ لیا. دوسری مثال بھی اسی طرح لکھیے, صرف اس میں ظاہر کو تثنیہ لے آئیں. ضربتو و اکرمنی الزیدانی, ضربتو و اکرمنی الزیدانی. تیسری مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لے آئیں. ضربتو و اکرمنی الزیدون, ضربتو و اکرمنی الزیدون. اب اس کو حل کریں. پہلا جملہ کیا؟ ضربتو و اکرمنی زیدن. जरब तू क्या चाहता है, जैद को नसब दे इसको अपना मफूल बनाए, और अक्रमनी चाहता है कि जैद को रफा दे अपना फाइल बनाए, किसको आमिल बनाया, जराबतू को, इसने जैद को नसब दे दिया तो जैद को जैदन कर दें भाई, ये नसब किसने दिया, जराबानी ने, और अक्रमानी क्या चाहता है, ये फाइल चाहता है तो इसके अंदर हुआ जमीर आ गई, तो जुमला क्या बन गया, जराबतू व अक्रमानी जैदन। अगला जुमला, जराबतू व अक्रमानी अजैदानी, किसको आमिल बनाया, जराबतू को, इसने अजैदानी को नसब दे दिया, अजैदानी को नसब दे दें, अजैदैनी कर दें इसको, अजैदानी को बदल दें अजैदैनी से, ये नसब आया, तस्निया का नसब या के साथ आता है, ये नसब किसने दिया, जराबतू ने, तो अक्रमानी क्या चाहता है, फाइल, तो इसके अंदर फाइल की जमीर लाएंगे, और ये जमीर किसको लौटेगी, जैद को, और जैद है तस्निया, तो हमें तस्निया की जमीर चाहिए, तो अक्रमानी को तस्निया वाले फेल से बदल दें, व अक्रमानी, अक्रमानी की जगह अक्रमानी, तस्निया वाला फेल ले आए, तो जुमला क्या बन गया, जराबतु व अक्रमानी अज़ैदैनी। तरीका समझ में आया, तीसरी मिसाल क्या थी, जराबतु व अक्रमानी अज़ैदूना, किसको आमिल बनाएंगे, जराबतु को, जराबतु क्या चाहता है, अज़ैदूना को नसब दे, नसब दे दें भाई, अज़ैदूना को बदल दें किस से, अज़ैदीना, ये नसब किसने दिया, जराबतू ने, और अक्रमानी क्या चाहता है, फाइल चाहता है, तो इसके अंदर फाइल की जमीर ले आएंगे, और वो जमीर किसको लौटेगी, अज़ैदीना को, और वो जमा मुजक्कर है, तो अक्रमानी के अंदर जमा मुजक्कर वाली जमीर लाएंगे, तो अक्रमानी को जमा मुजक्कर के सिगे से बदल दें, व अक्रमूनी, व अक्रमूनी, तो जुमला पूरा क्या बन गया, जराबतु व अक्रमूनी अज़ैदीन। तरीका समझ में आ गया भाई, इधर देखिए, फिर सुने, पहले बसरा वालों का मजहब जिक्र हुआ था, बसरा वाले किसको आमिल बनाते थे, सानी को, सानी को, तो पहला अगर फाइल का तकाजा करता था तो उसमें फाइल की जमीर लाते थे, और अगर पहला मफूल का तकाजा करता था तो मफूल को हजफ करते थे, जबकि दूसरा मजहब कूफा वालों का है, कूफा वाले किसको आमिल बनाते हैं, पहले को, तो दूसरा फेल अगर फाइल का तकाजा कर रहा हो तो उसमें फाइल की जमीर लाएंगे, और अगर दूसरा मफूल का तकाजा कर रहा हो तो मफूल को हजफ करना भी जायज और उसकी जमीर लाना भी जायज, लेकिन बेहतर क्या है, जमीर लाओ, हजफ ना करो मफूल को। तरीका समझ में आया, ये तो आम अफाल के अंदर था, और अगर अफाल कुलूब हों फिर क्या करेंगे भाई, अफाल कुलूब हों, कूफा वालों के मजहब के मुताबिक किस तरह उसको हल करेंगे, उसके लिए मिसाल लिखिए भाई, लिखिए भाई, हासिबानी व हासिबतु हुमा, हासिबानी व हासिबतु हुमा, हासिबतु हुमा के बाद एक लफ्ज की जगह छोड़ दें, आगे लिखें अज़ैदानी, अज़ैदानी, और आगे लिखें मुंतलिकन, मुंतलिकन, क्या लिखा, हासिबानी व हासिबतुहुमा अज़ैदानी मुंतलिकन, और हासिबतुहुमा के बाद मैंने कहा था एक लफ्ज की जगह छोड़ दें, अब देखो भाई, हासिबानी और हासिबतुहुमा दोनों अफाल कुलूब में से हैं, हासिबानी ये एक फाइल चाहता है और दो मफूल, ये चाहता है अज़ैदानी को अपने लिए फाइल बनाए और मुंतलिकान को अपने लिए मफूल सानी बनाए, क्योंकि एक मफूल हसीबानी के साथ या जमीर तो जुड़ी हुई है, और हसीबतुहुमा, हसीबतुहुमा ये भी एक फाइल चाहता है और दो मफूल, तो हसीबतुहुमा ये ता जमीर फाइल की भी साथ जुड़ी हुई है और हुमा जमीर मफूल अव्वल भी साथ है, लेकिन यह मफूल सानी चाहता है, तो आगे जो आखिर में मुंतलिकन आ रहा है उसमें तनाजो है, झगड़ा है, हसीबानी चाहता है ये मेरे लिए मफूल सानी बने और हसीबतुहुमा चाहता है ये मेरे लिए मफूल सानी बने, तवज्जो है, अच्छा मजहब किसका चल रहा है, कूफा वालों का, आमिल किसको बनाते हैं, पहले को, तो तो हसीबानी को आमिल बनाया और अज़ैदानी को इसके लिए फाइल बना दिया, अज़ैदानी को हसीबानी ने रफा दे दिया और मुंतलिकन को इस हसीबानी के लिए मफूले सानी बना दिया, उसने इसको नसब दे दिया। अब हसीब तो हुमा अपने लिए मफूले सानी चाहता है, तो एक सूरत यह है कि मफूले सानी को हजफ कर लें, लेकिन यह तो अफाले कुलूब हैं, इसमें तो हजफ जायज नहीं। दूसरी सूरत यह है कि उसकी जमीर ले आओ। क्या ले आओ? जमीर ले आओ। अब तवज्जो से सुनो, अब हम जमीर लाते हैं यहां हसीब तो हुमा के बाद, तो जमीर लाते हैं जो किसको राजे, मुंतलिकन को। तवज्जो है, मसलन मैं इयाहू जमीर ले आया, भाई हुआ नहीं लाऊंगा क्योंकि हुआ जमीर तो मरफू है, मरफू है, ये तो मुब्तदा वगैरह बनती है, और मुझे यहां मफूल की जमीर चाहिए, और मफूल क्या होता है? मनसूब। जमीरें आपने पढ़ा है, कुछ जमीरें मरफू होती हैं, कुछ मनसूब, कुछ मजरूर, फिर कुछ मुत्तसिल होती हैं, कुछ मुनफसिल। तवज्जो है, तो जमीरें कुल पांच किस्म पर हैं। जब जमीरें मरफू है वो मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, जमीरें मनसूब भी वो भी मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, जबकि मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है। तवज्जो है, जमीरें जमीर या मुत्तसिल होगी या मुनफसिल, फिर या वो मरफू होगी या मनसूब या मजरूर। मरफू दो किस्म पर है, जमीर मरफू मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, तवज्जो है, और जमीर मनसूब वो भी मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी, और मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है मुनफसिल नहीं। मरफू जमीर की मिसाल हुआ, यह मरफू है, यह मुब्तदा बनती है, यह जहां रफे का महल हो वहां आती है, और यह किसी से जुड़ी हुई है नहीं, तो यह मरफू मुनफसिल है। और ज़रबतु, यह ता जमीर क्या है? यह भी मरफू है, फाइल है, फाइल क्या होता है? मरफू, लेकिन यह फेल के साथ जुड़ी हुई है। तो देखो, मरफू कभी मुनफसिल होती है, जैसे हुआ, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन, नासारी जमीरें हैं भाई। और ज़रबतु, यह ता जमीर क्या है? यह भी मरफू है लेकिन मुत्तसिल। इसी तरह मुनफसिल, कभी मुत्तसिल होती है कभी मुनफसिल। ज़रबतु हु, यह हा जमीर क्या है? मफूल की है, और मफूल क्या होता है? मनसूब, तो यह मनसूब मुत्तसिल है, मनसूब मुत्तसिल है। और यही जमीर कभी मुनफसिल भी आती है, और वो है इयाहू, आपने पढ़ा है इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुम, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, बात समझ में आ गई। ये मनसूब मुनफसिल है, जब ऐसी जगह हो जहां हम जोड़ नहीं सकते, अलग रखना है, तो फिर ये मनसूब मुनफसिल लाते हैं। और मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है। किताबों का ये काफ जमीर क्या है? ये मुजाफिले है, मजरूर है और मुत्तसिल है। तो लिहाजा यहां पर हसीबनी व हसीब तुहुमा अज़ैदानी मुंतलिकन, ये जो आखिर में मुंतलिकन है, इसमें हसीबनी और हसीब तुहुमा का तनाजुर है। हसीबनी चाहता है ये मेरे लिए मफूल बने, और हसीब तुहुमा चाहता है मेरे लिए मफूल बने। आपने किसके लिए मफूल बनाया? हसीबानी के लिए, तो हसीब तो हुमा के लिए अब मफूल चाहिए। एक सूरत यह है कि मफूल को हजफ कर दें, लेकिन मफूल को यहां हजफ नहीं कर सकते क्योंकि अफाल कुलूब में से हैं। फिर दूसरी सूरत यह है कि उसकी जमीर ले आए। क्या ले आए? और अभी कूफा वालों का मजहब जिक्र हुआ, जब सानी मफूल का तकाजा कर रहा हो तो उसमें मफूल को हजफ करना भी जायज था, उसकी जमीर लाना भी जायज। हजफ करना इसलिए जायज क्योंकि मफूल फजला है, और जमीर भी ला सकते हैं क्योंकि इस सूरत में इजमार कबला जिक्र की खराबी भी लाजिम नहीं आती। तवज्जो है, तो यहां पर भी ये मुंतलिकन, इसके अंदर आमिल कौन? हसीबानी है, तो ये इसका ताल्लुक पहले फेल से है, तो लफ्जों के एतबार से ये बेशक आखिर में है, लेकिन रुतबे के एतबार से ये हसीब तो हुमा से मुकद्दम है। तवज्जो है, जब मुकद्दम है तो इसकी जमीर हम ला सकते हैं, और इजमार कबला जिक्र की खराबी भी लाजिम नहीं आएगी। चुनांचे हम जमीर लाते हैं, और जमीर कौन सी चाहिए? मरफू चाहिए या मनसूब चाहिए? मनसूब चाहिए। और मुत्तसिल चाहिए या मुनफसिल? मुत्तसिल चाहिए या मुनफसिल? मुनफसिल चाहिए। वजह यह कि देखो, आप लफ्जों पे गौर करो, हसीब तू हुमा, متصل تا ضمیر فاعل کی بھی جڑی ہوئی ہے اور ایک ہما ضمیر مفعول کی بھی جڑی ہوئی ہے, تو ایک اور متصل مفعول کی نہیں آ سکتی بھائی, تو ہمیں کیا لانا پڑے گی؟ منفصل. اب ہم ضمیر لاتے ہیں ایاہو. یہ ایاہو ضمیر واحد مذکر غائب, اور یہ کس کو راجع؟ منطلقان کو. ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے, منطلقان بھی مفرد مذکر اور ایاہو بھی مفرد مذکر, تو ہم ایاہو ضمیر لے آئے, لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. اس لیے کیونکہ یہ مفعول ثانی ہے, یہ مفعول ثانی ہے, اور مفعول اول کیا ہے؟ حسبتہما کا ہما ضمیر, وہ تثنیہ کی ضمیر, اور مفعول ثانی ایاہو مفرد کی ضمیر, تو یہ تو دونوں میں مطابقت نہیں ہے, یہ تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہے. حسبتہما کا مفعول اول کیا؟ ہما, اور ثانی کیا؟ ایاہو. تو مفعول اول تثنیہ, تثنیہ کی ضمیر, اور مفعول ثانی کیا؟ مفرد کی ضمیر. حالانکہ دونوں مفعول آپس میں مبتدا خبر کی طرح ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے, تو لہذا ایاہو ضمیر نہیں لا سکتے ہم. اچھا یوں کرتے ہیں پھر, ہم تثنیہ کی ضمیر لے آتے ہیں. ایاہوما حسبتہما ایاہوما, اب دونوں مفعولوں میں مطابقت ہو گئی. حسبتہما کا مفعول اول ہما تثنیہ کی ضمیر, اور ایاہما بھی کیا ہے؟ تثنیہ کی ضمیر, تو دونوں مفعول ایک دوسرے کے مطابق ہو گئے. لیکن اب مرجع کے ساتھ مطابقت نہیں ہے, مرجع تو ہے منطلقاً, وہ تو ہے مفرد, اور ایاہما ضمیر کیا لے آئے آپ؟ تثنیہ لے آئے, تو تثنیہ کی ضمیر تو مفرد کو راجع نہیں ہو سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہاں ضمیر بھی ہم نہیں لا سکتے, حذف بھی جائز نہیں کیونکہ افعال قلوب کے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں, ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اگر ضمیر لائیں گے تو یا تو پھر مفرد کی لائیں گے یا تثنیہ کی. اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہیں پھر مرجع کے ساتھ تو مطابقت ہو جائے گی, لیکن دونوں مفعولوں کی آپس میں مطابقت نہیں ہوگی. اور اگر آپ تثنیہ کی ضمیر لاتے ہیں پھر دو مفعولوں کی مطابقت تو ہو جائے گی, لیکن مرجع کے ساتھ ضمیر کی مطابقت نہیں ہوگی. تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ پھر اس اسم ظاہر کو دوبارہ لائیں گے. کیا کریں گے؟ حذف بھی نہیں کر سکتے, ضمیر بھی نہیں لا سکتے, تو آخری صورت یہ ہے کہ اسی اسم ظاہر کو دوبارہ لائیں گے. لہذا یہاں اسم ظاہر دوبارہ لائیں گے, حسبتہما کے بعد اسی منطلقن کو دوبارہ لائیں, لیکن یہ پہلے مفعول کے مطابق ہونا چاہیے. پہلا مفعول کیا ہے؟ تثنیہ. لہذا منطلقن کو نہ لاؤ بلکہ تثنیہ لاؤ. کیا لاؤ گے؟ منطلقانی, توجہ ہے, اور منطلقانی تو تثنیہ ہے, مرفوع ہے, اور ہمیں تو مفعول چاہیے جو منصوب ہوتا ہے, تو حالت نسبی میں لے جاؤ اس کو, منطلقینی. تو حسبتہما کے بعد منطلقینی لے آئیں بھائی, تو حسبتہما کے بعد منطلقینی لے آئیں بھائی. منطلقان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ پھر دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں رہے گی. پہلا مفعول ہما ہے تثنیہ, تو دوسرا بھی ہمیں تثنیہ چاہیے, تو منطلقین لے آئے, اور منطلقین حالت نسبی میں لائے کیونکہ یہ مفعول ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ, تو منطلقین لائے. تو جملہ کیا بن گیا؟ حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقان. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کوفہ والوں کا مذہب کیا ہوا کہ اول کو عامل بنائیں گے, ثانی اگر فاعل کا تقاضا کرے تو اس میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے, اور اگر ثانی مفعول کا تقاضا کریں تو مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز, لیکن بہتر کیا ہے؟ ضمیر لے آئیں تاکہ مفعول کا پتہ چل جائے. اور اگر افعال قلوب میں سے ہے وہ فعل ثانی, تو پھر اس صورت میں حذف بھی جائز نہیں اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں, تو پھر اس اسم ظاہر کو دوبارہ لائیں گے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی, پہلے متن دیکھیے. کہتے ہیں وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ, اور اگر آپ پہلے فعل کو عامل بنائیں, أَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي, تو آپ فاعل کی ضمیر لائیں گے فعل ثانی میں, وَالْمَفْعُولَ, اور اسی طرح مفعول کی ضمیر لائیں گے, عَلَى الْمُخْتَارِ, مذہب مختار پر. مفعول میں کیا بتلایا؟ حذف بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز, لیکن مختار کیا ہے؟ ضمیر لانا. یہ معنی ہے कि वल मफूला के मफूल की भी जमीर लाएंगे अलल मुख्तारी मजहब मुख्तार के मुताबिक, यानी उसको हजफ नहीं करेंगे। इल्ला यमना मान उन, मगर यह कि कोई मान आ जाए यानी अफाल कुलूब आ जाए तो वहां हजफ भी जायज नहीं और मफूल की जमीर लाना भी जायज नहीं। फतो जहीरा, तो फिर आप क्या करेंगे, मफूल को दोबारा इसमें जाहिर की सूरत में लाएंगे। इबारत समझ में आ गई। आप देखिए शरा के साथ ही सारे को कहते हैं वह इन अमल तल फेल अव्वल, और अगर आप फेले अव्वल को अमल दें कमा हुआ मुख्तार उल कूफी ना, जैसे कि कूफा वालों का मुख्तार है यानी उनका पसंदीदा मजहब है, अजमर तल फाइल फिल फेल सानी, तो आप फाइल की जमीर लाएंगे फेले सानी में, लविक तजाहू, अगर फेले सानी किसका तकाजा करे फाइल का, तो फिर आप फाइल की जमीर लाएंगे, नहू जरा बनी व अक्रमनी जैदन, किसको आमिल बनाया जराबानी को, और अक्रमनी के अंदर हुआ जमीर ले आए जो किसको राजे है जैद को। देखो भाई इस मिसाल पर नजर रखो, नहवु जराबानी व अक्रमनी जैदुन, जैदुन को रफा किसने दिया जराबानी ने, और अक्रमनी में क्या ले आए जमीर, और यह जमीर किसको राजे जैद, जैद लफ्जों में तो बेशक मुअख्खर लेकिन रुतबे के एतबार से मुकद्दम है, तो यह इजमार कबला जिक्र सिर्फ लफ्जन है रुतबतन नहीं और यह जायज है। अब देखिए इबारत कहते हैं नहु ज़रबनी व अक्रमनी जैदुन इदा जअलता जैदन फाइलु ज़रबनी, जब आप जैद को ज़रबनी का फाइल बना दें, व अजमर तफी अक्रमनी जमीरन राजिअन इला जैदिन, और आप जमीर ले आए अक्रमनी के अंदर ऐसी जमीर जो लौट रही हो जैद की तरफ, लितकद्दुमी ही रुतबतन, इस वजह से कि जैद जो है रुतबे के एतबार से मुकद्दम है, फला महजूर फी ही, तो इसमें कोई ममनू चीज नहीं, तो इसमें कोई ममनू नहीं। भाई जब सानी को आप आमिल बनाते थे बसरा वालों के नजदीक, तो फिर पहले फेल के अंदर फाइल की जमीर लाते थे और तो वहां इजमार कबला जिक्र की खराबी लाजिम आती थी, लेकिन जमहूर क्या कहते हैं इजमार कबला जिक्र उम्दा में जायज है बशर्ते तफसीर, जबकि कूफा वालों के मजहब पर अमल करें पहले को आमिल बनाएं तो सानी के अंदर जमीर लाएंगे और वह जमीर अगरचे उस लफ्ज को राजे जो बाद में आ रहा है लेकिन वह लफ्जों के एतबार से मुअख्खर है रुतबे के एतबार से क्या है मुकद्दम है, तो इस सूरत में इजमार कबला जिक्र सिर्फ लफ्जन लाजिम आया है रुतबतन लाजिम नहीं और यह जायज है, देखो कोई खराबी लाजिम नहीं आई। यह माना है तो कहते हैं वह अजमर तफी अक्रमनी जमीरन राजिअन इला जैदीन, और आप अक्रमनी के अंदर ऐसी जमीर लाते हैं जो लौट रही है जैद की तरफ, लितकद्दुमी ही रुतबतन, बवजह उस जैद के रुतबे के एतबार से मुकद्दम होने के, तो फला महजूर फी ही हीन इज़िन, तो उस वक्त इसके अंदर कोई ममनू चीज नहीं है यानी कोई ममनू लाजिम नहीं आता, ला हज़फल फाइली, ना तो फाइल का हजफ लाजिम आता है क्योंकि आप फाइल की जमीर ला रहे हैं, वलल इजमार कबल ज़िक्री लफ्ज़न व रुतबतन, और ना ही इजमार कबल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन लाजिम आ रहा है, बल लफ्ज़न फकत, बल्कि सिर्फ इजमार कबल जिक्र लफ्जन लाजिम आ रहा है, वह हुआ जायज उन, और वो जायज है। वह अजमर तल मफूल फिल फेल सानी लविक तजाहू, और आप मफूल की जमीर लाएंगे फेले सानी के अंदर लविक तजाहू, अगर फेले सानी मफूल का तकाजा करे अलल मजहबिल मुख्तारी, किसके मुताबिक, भाई कूफा वालों का मजहब चल रहा है आमिल पहले को बनाया दूसरा फेल किसका तकाजा कर रहा है मफूल का, तो उसमें दो सूरतें जायज, हजफ भी जायज और जमीर लाना भी जायज, लेकिन पसंदीदा क्या जमीर लाई जाए हजफ न किया जाए भाई ताकि मफूल का पता चल जाए। यह माना है अलल मजहबिल मुख्तारी, तो आप मफूल की जमीर लाएंगे पसंदीदा मजहब के मुताबिक, वलम तहजिफ हो, और उसको हजफ नहीं करेंगे, पसंदीदा मजहब के मुताबिक जमीर लाएंगे मफूल की और उसको हजफ नहीं करेंगे, वह इन जाजा हजफ हो, अगरचे हजफ भी जायज है। भाई क्यों जमीर क्यों लाएंगे, कहते हैं ली अल्लाह यू तवाहमा, ताकि कहीं यह वहम न किया जाए कि अन्ना मफूल अल्फ़िअल सानी मुगायरुन लिल मज़कूरी, कि फ़िअल सानी का मफूल वो मुगायर है मजकूर से, इस मजकूर से मुगायर है कोई और है। भाई देखो ना ज़रबनी व अकरम तो जैदुन, ज़रबनी व अकरम तो जैदुन, और एक सूरत यह है कि मैं जमीर ले आऊं, जराबनी व अक्रम तु हु जैदुन, जब अक्रम तु के लिए मैंने मफूल को हजफ कर दिया तो अब पता नहीं कि यही मफूल जैद ही है या कोई और है, और जब मैंने अक्रम तु हु के साथ हा जमीर जोड़ दी तो अब पता चल गया यह हा जमीर तो किसको राजे, जैद को, मालूम हुआ इकराम भी इसी का हुआ है, मफूल का पता चल गया। तो अगर आप मफूल को हजफ कर देंगे तो फिर मफूल का पता नहीं चलेगा, सुनने वाला समझेगा शायद मफूल कोई और है, ये जैद नहीं है। ये माना है लि अल्ला युतवहमा, जमीर मफूल की लाएंगे ताकि ये वहम न किया जाए कि अन्ना मफूल अल्फिअल सानी मुगायर लिल मज़कूरी, कि फिअल सानी का मफूल वो मुगायर है इस मज़कूरा, ये जो इसमें जाहिर जो मज़कूर है इसके मुगायर है, इसके अलावा है। وَيَكُونُ الزَّمِيرُ حِينَ إِذٍ رَاجِعًا إِلَى لَفْزٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً, और इस सूरत में जो जमीर है, इस सूरत में जो जमीर है वो राजिअन, वो राजे है, इला लफ्जिन, ऐसे लफ्ज की तरफ, मुतकद्दिमिन रुतबतन, जो रुतबे के एतबार से मुतकद्दिम है, जो रुतबे के एतबार से मुकद्दम है। ज़रबनी व अकरमतुहु ज़ैदुन, ये ज़ैदुन का ताल्लुक किस से, ज़रबनी से, उसने इसमें अमल किया है, तो जैद लफ्जों में बेशक मुअख्खर लेकिन रुतबे के एतबार से मुकद्दम है, और यह अकरमतुहु की हा जमीर इसी को राजे है। तो इस सूरत में वयकूनु ज़मीरु हीना इज़िन राजिअन इला लफ्ज़िन मुतक़द्दिमिन रुतबतन, और इस वक्त फिर यह जमीर राजे होगी ऐसे लफ्ज की तरफ जो रुतबे के एतबार से मुकद्दम है। कमा तकूलु, जैसे आप कहते हैं, ज़रबनी व अकरमतुहु ज़ैदुन, यहां तक बातें समझ में आ गईं। आगे इल्ला अयम ना मानेउन, भाई इन्होंने बताया अगर आप पहले फेल को आमिल बनाएं तो अगर दूसरा फेल अगर फाइल का तकाजा करे तो उसमें फाइल की जमीर ले आओ, और अगर वो मफूल का तकाजा करे तो मफूल को हजफ करना भी जायज, लेकिन पसंदीदा क्या है, उसकी जमीर ले आओ। इल्ला अयम ना मानेउन, मगर यह कि कोई मानेउ आ जाए। किस चीज से मानेउ, भाई वो अफाले कुलूब में हजफ भी जायज नहीं था और जमीर लाना भी जायज नहीं था, तो फिर आप क्या करते हैं, दोबारा इसमें जाहिर को लाते हैं। तो ये माना है इल्ला अय्यम ना मानेउन, मगर ये कि कोई माने आ जाए, मीनल इजमारी, जमीर लाने से भी जमीर भी नहीं ला सकते, कमा हुआ कौल उल मुख्तार, जैसे कि कौल मुख्तार है, पसंदीदा कौल क्या है, दूसरा जब मफूल का तकाजा कर रहा है तो उसमें हजफ भी जायज, जमीर लाना भी जायज, लेकिन पसंदीदा क्या, जमीर लाई जाए। तो कहते हैं कमा हुआ कौल उल मुख्तार, जैसे कि मुख्तार कौल है, तो इल्ला अय्यम ना मानेउ मिनल इजमारी, मगर यह कि कोई माने आ जाए जमीर लाने से भी, कमा हुआ कौल उल मुख्तार, जैसे कि कौल मुख्तार है, व मिनल हजफी, और हजफ से भी कोई माने आ जाए, कमा हुआ कौल उल गैर उल मुख्तारी, जैसे कि कौले गैर मुख्तार है। जब फेले सानी मफूल का तकाजा करे उसमें हजफ भी जायज और जमीर लाना भी जायज, हजफ है गैर मुख्तार और जमीर लाना मुख्तार है। और देखो साहिब जामी ने इल्ला अयमना मानेउन में के बाद क्या बताया, माने आ जाए किस चीज से, मिनल इजमारी व मिनल हजफी, इजमार से भी मान्य आ जाए और हजफ से भी मान्य आ जाए, तो आगे आया फतुज हीरल मफूला, तो फिर आप क्या करेंगे, मफूल को दोबारा इसमें जाहिर की सूरत में लाएंगे। तो कोई माने आ जाए जमीर भी नहीं ला सकते और हजफ भी नहीं कर सकते, जैसे अफाले कुलूब के अंदर है, फतुज हीरल मफूला, तो फिर आप क्या करेंगे, मफूल को दोबारा इसमें जाहिर लाएंगे। फइन्नहु इज़म तनाअल इजमार वल हज़्फ, इसलिए क्योंकि जब इजमार भी मुमतने हुआ और हजफ भी मुमतने हुआ, तो ला सबीला इल्ला इलल इजहार, तो फिर कोई रास्ता नहीं मगर इजहार की तरफ ही, यानी दोबारा इसमें जाहिर को लाना पड़ेगा। नहु हसीबनी व हसीब तुहमा मुंतलिकैन ज़ैदान मुंतलिकन, हैसु उमिला हसीबनी, इस तौर पर के हसीबनी को, अब देखो ये हसीबनी व हसीब तुहमा मुंतलिकैन ज़ैदान मुंतलिकन, इसमें जो तफसील मैंने बयान की थी अब वो सारी ये यहां बयान करेंगे। कहते हैं देखो हैसु उमिला हसीबनी, हसीबनी को आमिल बनाया गया, फजुइला ज़ैदानी फाइलन लहू, तो ज़ैदानी को उसके लिए फाइल बना दिया गया, व मुंतलिकन मफूलन लहू, और मुंतलिकन को उसके लिए मफूल बना दिया गया, व उज़मिरल मफूलुल अव्वलु फी हसिबतुहुमा, और हसिबतुहुमा के अंदर मफूल अव्वल की जमीर लाई गई, ये जो हुमा जमीर है, व उज़हिरल मफूलुस सानी, और दूसरे मफूल को जाहिर लाया गया, वह हुआ मुंतलिकैन, और वो क्या है मुंतलिकैन। भाई इसको जाहिर क्यों लाया गया, कहते हैं लि मानिइन, एक मानिअ की वजह से, वह हुआ और वो ये कि अन्नहु ला उज़मिरा मुफ़रदन, कि अगर इसकी जमीर मुफ़रद की लाई जाए तो खालफल मफूल अल अव्वला, कि अगर जमीर मुफ़रद की जमीर लाई जाए तो खालफल मफूल अल अव्वला, तो यह जमीर मुखालिफ हो जाएगी किसके, मफूल अव्वल के, या इसको मफूल अव्वल को मरफू पढ़ लो, इसको खालफा का फाइल बना दो, या खालफल मफूल अव्वल, तो वो मफूल अव्वल मुखालिफ हो जाएगा उस जमीर के, क्योंकि वो तो तस्निया है और जमीर तो क्या है मुफरद की आपने निकाली। वला उज मीरा मुसन्नन, और अगर तस्निया की जमीर लाई जाए खालफल मर्जा, फिर तो यह जमीर मर्जे के मुखालिफ हो जाएगी, वह हुआ कौलहू मुंतलिकन, और मर्जा क्या है वो मुंतलिकन है, वो तो मुफरद है। अब यहां से एक और बात आपको बतलाएंगे, उस जुमले पे नजर रखो, हसीबनी व हसीबतुहुमा मुंतलिकैनी ज़ैदानी मुंतलिकन, इन्होंने क्या बताया आपको कि ये हसीबनी और हसीबतुहुमा इनका तनाजुअ है किसके बारे में, वो जो आखिर में मुंतलिकन आ रहा है, तवज्जो है, उसमें झगड़ा है। हसीबनी चाहता है ये मेरे लिए मफूल सानी बने, हसीबतुहुमा चाहता है ये मेरे लिए मफूल सानी बने। फिर हसीबतुहुमा के लिए आपने मफूल सानी क्या निकाला, मुंतलिकैन, क्या निकाला, मालूम हुआ हसीबतुहुमा तो तस्निया वाला मफूल चाहता है, और ये आगे जो मुंतलिकन है वो तो मुफरद है, मालूम हुआ इसमें तो झगड़ा ही नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हसीबनी मफूले सानी को मुफरत चाहता है और हसीबतुहुमा मफूले सानी तस्निया चाहता है, और मुंतलिकन तो मुफरत है, वो तो हसीबनी के लिए मफूल बन सकता है, हसीबतुहुमा के लिए मफूल बन ही नहीं सकता, इसीलिए तो आपने जब उसके लिए मफूल निकाला तो तस्निया निकाला, वो मुफरत मफूल का तकाजा ही नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई, तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि हां बात ऐसी ही है, इस मुंतलिकन को अगर इसी तरह मुफरद होने के एतबार से देखा जाए तो फिर इसमें झगड़ा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई, हां कहते हैं झगड़े का तसव्वुर इसी सूरत में हो सकता है कि आप यह तसव्वुर करें, क्या आप यह तसव्वुर करें कि देखो मुंतलिकन, तवज्जो है, यह मुंतलिक दो चीजों पर दलालत कर रहा है, एक ये मुफरद होने पे भी दलालत कर रहा है कि ये मुफरद है, दूसरा ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि कोई जात है जो चलने वाली है। मुंतलिक का क्या माना, कोई जात है जो चलने वाली है, तो इसमें मुफरद होने पर भी ये दलालत कर रहा है और जात के मुंतलिक होने पर भी ये क्या कर रहा है, दलालत कर रहा है। कहते हैं झगड़े का तसव्वुर उसी वक्त हो सकता है जब आप मुफरद और तस्निया से कतअ नजर यह देखें कि मुंतलिक दलालत कर रहा है एक ऐसी जात पर जो इंतलाक के साथ मौसूफ है, जो किसके साथ मौसूफ है, भाई देखो जारिब का क्या माना, एक जात है जो जर्ब के साथ मौसूफ है यानी जिसने जर्ब लगाई है, शारिब का क्या माना, एक जात है जो शुर्ब के साथ मौसूफ है यानी जिसने पीने वाला फेल किया है, आकिल, आकिल अकल का माना खाना खाना, आकिल का क्या माना, एक जात है जो खाने के साथ मौसूफ है, तो इसी तरह यहां मुंतलिक आया, मुंतलिक ने किस पर दलालत की, एक जात है जो इंतलाक के साथ मौसूफ है, किसके साथ, इंतलाक यानी चलने के साथ मौसूफ है। तो कहते हैं झगड़े का तसव्वुर इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप मुंतलिकन में यह मुलाहिजा करें कि यह एक ऐसी जात पर दलालत कर रहा है जो इंतलाक के साथ मौसूफ है, इफराद और तस्निया से कतई नजर, इफराद और तस्निया से कतई नजर यह एक ऐसी जात पर दलालत कर रहा है जो इंतलाक के साथ मौसूफ है, और हसीबनी भी ऐसा मफूल चाहता है जो इंतलाक के साथ मौसूफ हो, और हसीबतुहुमा भी ऐसा मफूल चाहता है जो इंतलाक के साथ मौसूफ हो। افراد اور تسنیہ سے قطع نظر, اس لیے کیونکہ اگر افراد اور تسنیہ کو آپ مد نظر رکھیں گے پھر تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ حسبنی مفرد مفعول ثانی چاہتا ہے اور حسبتہما تسنیہ چاہتا ہے. بات سمجھ میں آگے دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں ولا یخفا, اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہ لا یتصور تنازع فی ہذہ صورت, کہ تنازع کا تصور نہیں کیا جاتا اس صورت میں, الا اذا لاحظت المفعول الثانی, مگر یہ کہ جب آپ ملاحظہ کریں مفعول ثانی کو کہ اسمن دالن, کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کر رہا ہے علی اتصاف ذات ما, کسی ایک ذات کے متصف ہونے پر, کہ ایک ذات متصف ہو رہی ہے بل انطلاقی کس کے ساتھ, جب آپ مفعول ثانی کو ملاحظہ کریں صرف اس حیثیت سے کہ ایک ذات انطلاق کے ساتھ متصف ہو رہی ہے, من غیر ملاحظتی تسنیتی ہی و افرادی ہی, بغیر اس کے تسنیہ اور مفرد ہونے کے, اس کے تسنیہ اور مفرد ہونے کو ملاحظہ کیے بغیر, صرف اتنا دیکھیں کہ منطلقاً ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہے, مفرد یا تسنیہ ہونے کو نہ دیکھیں, پھر ہی جھگڑے کا تصور کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مفرد یا تسنیہ ہونے کو ملاحظہ کریں گے پھر اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں من غیر ملاحظتی تسنیتی ہی و افرادی ہی, بغیر اس کے مفرد ہونے اور اس کے تسنیہ ہونے کو ملاحظہ کرتے ہوئے, و الا, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آپ تسنیہ اور افراد کو بھی ملاحظہ کریں, فظاہر انہ لا تنازع بین الفعلین فی المفعول الثانی, پھر ظاہر یہی ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے دو فعلوں کے درمیان مفعول ثانی میں, لان الاول یقتضی مفعولا مفردا, اس لیے کیونکہ پہلا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول مفرد کا, والثانی مفعولا مسنن, اور دوسرا ایسے مفعول کا جو تسنیہ ہو, فلا یتوجہان الی امر واحد, تو یہ دونوں ایک چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں, فلا تنازع, تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی, اچھی طرح حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.